السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. کوئی کام ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق اور اس کی رحمت کے بغیر. ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں اس بات کی کہ وہ میرے آپ کے لیے خیر اور عافیت کے ساتھ اس سفر کو پورا کرنے والا بنا دے. آپ کو مجھے جتنا زیادہ اس بات کا یقین ہوگا نا کہ میں یہاں اپنے مالک کے لیے بیٹھی ہوں، آپ کو اپنی ذات پہ بھی وہ اختیار نہ محسوس ہو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے اوپر. اور جب کسی کا کوئی عمل اس طرح کا ہو جاتا ہے، نمبر ایک خوبصورتی آئے گی، آپ ٹالیں گے نہیں، کیونکہ جس کو پیش کرنا ہوتا ہے اس کا مقام سامنے ہوتا ہے. بچے کو کوئی چیز دینی ہو اور وہ بھی اپنے گھر کے بچے کو، اور کسی معزز مہمان کو کوئی چیز سرو کرنی ہو، فرق ہوتا ہے نا. جہازوں میں جس طرح سے کھانا سرو کیا جاتا ہے، کیا روز ہمیں ویسے ہی سرو ہوتا ہے گھروں میں؟ نہیں. تو بس پھر خوبصورتی بھی آئے گی اور اس کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ زندگی خوبصورت ہوگی. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے ہم پارا نمبر ایک کو کنٹینیو کریں گے. تھوڑا سا میں بتا دوں ان لوگوں کو جو ہو سکتا ہے کہ ابھی نئے نئے جوائن ہو رہے ہیں، کہ ہم عموماً پارا نمبر ایک دو دنوں میں کرتے ہیں، اور کبھی وقت میں گنجائش ہو پارا نمبر تیس وہ بھی دو ہی دنوں میں کرتے ہیں. کیوں؟ جب کسی چیز کا شروع اچھا ہو جائے تو اس کا آخر بھی اچھا ہوتا ہے. چند وجوہات ہوتی ہیں، میں ایک دو جملوں میں بتا دوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید روز ہی ایسا ہوگا. ہر پارا ایک ہی دن میں ہوگا انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے. لیکن خاص طور پہ پہلے پارے کو تھوڑا آرام سے کرنے کے فوائد، نمبر ایک ذہنی تیاری، دوسری بات ہے کہ ہمارے دین کا مزاج تدریج کا ہے. ماں ننسخ من آیتن، قرآن میں آتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں تو اسے بہتر لاتے ہیں، تو ہم اپنی مصروف زندگی سے نکلتے ہیں اور اللہ کا کلام ہمارے سامنے ہوتا ہے. اب یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. کچھ لوگ ابھی مصروف ہوتے ہیں، ابھی ان کے ذہن تیار نہیں ہوئے ہوتے، نئے نئے لوگ جوائن کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہم نہیں چاہتے کہ نئے آنے والے کچھ بھی مس کریں یا ان کو یہ ریگریٹ ہو، کیونکہ ریگریٹ سے جب کوئی بات شروع کی جاتی ہے نا تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا. اور پھر اسی طرح سے ہمیں جلدی کس بات کی ہے. تو لہٰذا جب ایک آدھ دن کے اندر انسان ذہنی طور پہ تیار ہو جاتا ہے کسی چیز کے لیے، تو اس کے بعد پھر اللہ کی رحمت سے بوجھ اٹھانے کی طاقت بھی آ جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے، زندگی کا اصول بنائیے، صرف ختم نہیں کرنا، صرف پورا نہیں کرنا، تکمیل کا انتظار نہیں، ختم کی دعا کا انتظار نہیں. آج یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ بن گیا ہمارے دین کے فتنوں کے اندر، آنے والے فتنوں میں سے. اور وہ کیا ہے کہ ہم صرف خانہ پوری یا دل کی تسلی کے لیے، اور آخری بات کر کے شروع کروں گی آج کے اس خوبصورت سفر کو جو پارا ون کا سیکنڈ ہاف ہے. کل جن لوگوں نے ہمارے ساتھ سنا ان کے لیے تو کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن جو نئے لوگ ہیں وہ چونکہ اپنے مصحف کھولیں گے ڈھونڈیں گے، تو میں بتا دیتی ہوں کہ کل ہم نے آیت نمبر 78 سورۃ البقرہ پہ تمام کیا تھا. آج انشاءاللہ ترجمہ ہم پڑھیں گے 78 سے. یہ دو آیتیں ہم کیوں دہرائیں گے؟ وہ بھی وہی حکمت ہے کہ جوڑ پکا ہونا چاہیے. آئیے شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے دورہ قرآن 2020 میں سے ہم پہلے پارے کے سیکنڈ ہاف کا آغاز کریں گے. اور اس پارے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے رکھا ہے اس کو اپنے لیے لینے کی کوشش کریں گے، اور اپنی خواہش بھی یہی رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کے اور سننے کے بعد سب سے زیادہ میری اصلاح ہو جائے. شعور سے دعا مانگتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ دعا کیوں مانگنی ہے؟ تاکہ سینہ کھل جائے اور جو دیا جا رہا ہے اس کو لینے کے قابل ہو جائیں۔ اور کیوں مانگنی ہے؟ اس لیے مانگنی ہے کہ اے مالک، گھٹے ہوئے سینے کے ساتھ یہاں نہ بٹھانا۔ جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کریں گے، اتنا زیادہ ہمارا دل کھلے گا۔ اور وحلل عقدۃ من لسانی کیوں ہوگا؟ کہ جو سنتی ہوں وہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر سکوں۔ کبھی کبھی ہوتا کیا ہے کہ ہم جو بات سنتے ہیں اس وقت ہمیں تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن جب ہم دوسروں کو بتانے لگتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں تو ان کو زیادہ اٹریکٹ نہیں کرتی۔ تو دو وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے کہ زبان کی گرے ہیں، بات کرنا نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان کی گرہیں کھول دے، یفقہوا قولی۔ اور پھر ہم کہتے ہیں ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اے مالک آسان کر دے، مشکل نہ کرنا، اور خاتمہ بالخیر ہو۔ آپ دیکھیے کہ یہ ایک روحانی سفر بھی ہوتا ہے، جسمانی سفر کے ساتھ ساتھ یہ ایک روحانی سفر بھی ہے۔ اگر ہم اس کو اس کے سارے تقاضوں کے ساتھ نہیں کریں گے اور صرف جسمانی تقاضے پورے کرتے ہوئے کھاتے پیتے بولتے سنتے ہی کریں گے، تو یاد رکھیے گا کہ یہ بہت زیادہ فائدہ ہمیں پھر نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو ایک ایسی خوبصورت چیز بنا دیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کب مانگی تھی؟ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کی ذمہ داریاں دی اور وقت کے جابر سلطان یعنی فرعون کے پاس کلمہ حق پیش کرنے کا موقع آیا۔ تو آپ سوچئے کہ آپ اور میں تو اپنے ہی جیسوں سے دین کی بات کرتے ہیں، پورے شعور کے ساتھ اس چیز کو لینے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہم لینے کا بھی حق ادا کریں۔ اور کل پھر جب موقع بنے گا، انشاءاللہ بنے گا، چلتے جائیں گے، کل آپ دینے والے بنیں گے، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین لینا۔ چلیے تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کل کیا سیکھا۔ تو پچھلا حصہ جو سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 78 تک تھا، اس میں جو چیزیں سیکھی تھیں، اس میں سے پہلی چیز تو دیکھیے کہ ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کے ساتھ کاموں کو کرنا سیکھا تھا۔ پچھلے حصے کا خلاصہ ہے، اور موضوع ہم جانتے ہیں کہ ادھوری اطاعت تھی۔ کل جو مثالیں لی تھیں وہ لفظی مثالیں تھیں، الفاظ میں کچھ چیزیں سیکھیں، آج ہم پریکٹیکل دیکھیں گے۔ آپ نے دو لفظ سنے ہوں گے، تھیوری اور پریکٹیکل۔ لکھیے گا ایک جملہ، ادھوری اطاعت کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس مکمل اطاعت کرنے والوں کی بھی کمی ہے، رول ماڈل۔ پارے کے آغاز میں آپ نے سورۃ الفاتحہ میں ایک دعا مانگی کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ انعام والوں کا راستہ دکھا۔ تو جب انعام والوں کا راستہ مانگا تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ کہیں ارد گرد ہی ہوں گے نا۔ دیکھیں، ماضی کی شخصیات سے فائدہ اٹھانا، ان کی باتیں کرنا تعظیمن ہوتا ہے۔ آج بھی ہم صحابہ کرام کے قصے رو رو کے سنتے ہیں اور سناتے ہیں، لیکن موجودہ دور کی شخصیات اگر ساتھ مل جائیں تو عام سیدھے سادھے لوگوں کے لیے دین پہ چلنا بہت آسان ہو جاتا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو راستے کے مائل سٹون بن جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ نیک لوگوں کے نام بتا دے اور میں چل پڑوں، ان کی انگلی تھام لوں، یا میں بھی انہی کے نام لے کے تیرے پاس آؤں، بلکہ کیا کہا؟ راستہ دکھا۔ تو ہم نے کیا سیکھا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک دشمن سے پناہ نہ مانگ لی جائے، کام شروع نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے کہ دنیا میں بھی آپ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں، لوگ اپنے پلانز سیکرٹ رکھتے ہیں مخالفین کے ڈر سے، اور اسی طرح سے دشمن کا فرق کون نہیں جانتا دوست کے فرق سے۔ تو ہمیں جب اس بات کا یقین جو ہو گیا کہ ہمارا دشمن تو ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اعوذ باللہ پڑھ کر ہم نے شیطان سے پناہ مانگی۔ آج ایک اور وجہ لے لیجئے شیطان سے پناہ مانگنے کی، اس کو سمجھ کر اپنی زندگی میں یہ دعا کر لیں، بلکہ آج شعور کے ساتھ کہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے میرے مالک میں بڑی کمزور ہوں۔ امیجینیشن میں لائیں، کوئی کمزور سی عورت بچی گھر سے نکلی اور گلی سنسان ہے، जाना किसी मजबूरी में था, साथ कोई ले जाने वाला नहीं था। गली में से गुजरते हुए पीछे से उसको कदमों की आवाज़ आई। सहम गए, दुबक गए, पता नहीं पीछे कौन है। अब सांस भी तेज़ है तो कदम भी तेज़ हैं, और पीछे से जो आवाज़ें आ रही हैं वो भी तेज़ से तेज़ हैं। अब उसको खौफ क्या है कि पता नहीं क्या होगा, और दिल में सोचती है अब्बू क्यों नहीं आए जिन्होंने मुझे ट्यूशन पढ़ने के लिए छोड़ने जाना था, और अब मैं निकल आई हूँ घर से। और धक धक करते दिल के साथ, जब बिल्कुल ऐसे उसको महसूस हो रहा है कि पीछे से आने वाले का हाथ मेरी गर्दन पे आने वाला है, एकदम उसको कोने से मुड़ते ही सामने से बाप आता दिखे। सोचिए ये 7, 8, 10 साल की मासूम सी बच्ची क्या करेगी, एकदम अपने आप को अपने बाप के साथ लगाएगी। और दिल का हाल क्या होगा, अल्लाह तेरा शुक्र है मैं अब अपने बाप की पनाह में आ गई। इमेजिनेशन में लाइए ज़रा, जब एक मासूम बच्ची अपने आप को बाप के हाथों में देती है तो उसको क्या तहफ़ का एहसास होता है। और अब सारी मिसाल को भूल के आ जाइए अपने और अपने रब के बीच में। वो अल्लाह जिसका नाम फिर हमने इसके बाद पढ़ा था, अगली चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब एक इंसान अपने आप को अल्लाह की पनाह में देता है तो याद रखिए अल्लाह का नाम, अल्लाह की ज़ात उसके लिए क्या बन जाती है। यानी ये आउज़ु का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, दोस्त और दुश्मन का फ़र्क पता चल गया, आपको यकीन हो गया इस बात का कि सबसे बड़ी पनाह अल्लाह की है, तो आप अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं। वो पनाह फिर सहरा में खड़े एक इंसान के लिए भी पनाह है जिसको कुछ नहीं दिख रहा रेत के सिवा, ये जंगल में खड़े एक शख्स के लिए भी पनाह है कि जिसको इर्द गिर्द फैले हुए दरख्तों और घास के सिवा कुछ नहीं दिख रहा, और पहाड़ों में घूमते हुए शख्स को भी वो पनाह देता है। तो अगली चीज़ जो मैंने आपने सीखी थी वो थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 7 नाम अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला। क्यों अल्लाह का नाम हमने क्यों लिया, इसलिए कि अभी तो हमने शैतान से पनाह मांगी, तो लफ्ज़ अल्लाह को ज़रा सा समझ लीजिए, चंद लफ्ज़ हैं सिर्फ। मैं तो अभी आपको सिर्फ ये आउज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह का रब बताना चाहती हूँ ताकि कल से जब आप ये पढ़ें तो आपको ये शऊर हो। हम इसलिए बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं कि हमारा इलाह, देखिए लफ्ज़ अल्लाह है ना, ये असल में अल प्लस इलाह। अल क्या है, आम को ख़ास करने वाला। अल्लाह सुभान ताला के लिए लफ्ज़ असल में है इलाह, और लफ्ज़ इलाह के अरबी में इतने मानी हैं कि मैं अगर अभी दूँ तो शायद आप परेशान हो, लेकिन जो 4 बड़े मानी जिसके अंदर फिर आगे बहुत सारी चीज़ें आएगी वो लिख लीजिए। माबूत, वो जिसकी तरफ लजाजत की जाए यानी जिसके आगे जाके रो रो के दुआएं कीजिए, वो जिसको घबराहट में पनाह के लिए तलब किया जाए, और चौथी चीज़ महबूब, अल माबूदू अल मलजाऊ अल मलफूज़ इलई अल महबूब। तो हम बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ते हैं, इधर देखिए अल मलफूज़ इलैह पे अमल किया आपने मैंने कि कोई पनाह नहीं ला मल जावला मन जमीन का इल्ला इलैक, दो में अल्फाज मिलते हैं। तो बिस्मिल्लाह इसलिए पढ़ते हैं कि आपको यकीन है कि मेरा माबूद अल्लाह है, मैंने पूरी इताअत उसकी करनी है, वो मेरे लिए जिस तरह नमाज के वक्त अहम है इसी तरह बच्चे बच्चे की शादी करते वक्त भी वो अहम है, और उसी के सामने दुआएँ रखनी है लजाजत के साथ, और घबराहटों में परेशानियों में और लॉकडाउन की इन वहशतों में और कोरोना के खौफ में मैंने उसी के दामन ने रहमत में पनाह लेनी है, और सबसे बड़ी बात मेरा तो महबूब भी वही है। वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बल्लाह, ईमान वाले अल्लाह ताला से मोहब्बत में बहुत ज़्यादा शदीद होते हैं। तो ये थी पहली वजह हमारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहने की, और सूरत फातिहा के आगाज़ में भी बिस्मिल्लाह, सूरत अल बकरा के शुरू में भी बिस्मिल्लाह, और कुरान पाक में 114 में से सिर्फ सूरत तौबा को हटा दीजिए तो हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह। हमने इसलिए भी बिस्मिल्लाह पढ़ी क्योंकि बिस्मिल्लाह कुरान पाक की एक मुस्तकिल आयत भी है, और इसलिए भी बिस्मिल्लाह पढ़नी है कि अल्लाह के नाम के साथ ही तो काम करेंगे। जब काम उसका करने लगे तो नाम भी उसका लेंगे, जब कलाम उसका सुनने लगे तो फिर नाम भी तो उसी का लेंगे। और इसी तरह से बिस्मिल्लाह इसलिए पढ़नी कि अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया। आपने फरमाया कि जिस काम को बिस्मिल्लाह के बगैर पढ़ा जाए वो अबतर होगा, जड़ कटा होगा। सूरत कौसर में जो लफ्ज़ है बिल्कुल वही लफ्ज़ है, उसी तरह डिफरेंट शक्ल में। फिर इसीलिए भी हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं कि बिस्मिल्लाह पढ़ते ही हमारी नीयतें दुरुस्त होने लगती हैं। हो सकता है अभी भी अंदर कोई वायरस छुपा हो दिखावे का और शोहरत का कि देखो देखो मैं क्या कर रही हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। ये ना कहा करे मैंने ये किया, ये कहा करे मुझसे कराया गया। ये हो गया, अल्लाह ने कर दिया, रब्बी हो गया, रब्बी से बब्बी। बड़े लोग कहते थे मैंने नहीं किया, रब्बी से बब्बी हो गया। और इसलिए भी फिर हमने बिस्मिल्लाह पढ़ी कि इससे बरकत हासिल होती है, और इसलिए भी कि इससे हमें इखलास हासिल होता है, और अल्लाह ताला का नाम लेने से ध्यान उधर जाता है। ये भी लिख लीजिए, देखिए ना, जिसका नाम लेंगे ध्यान भी तो उधर ही जाएगा ना। तो ये तो कुरान पाक पढ़ने बैठे हैं अल्लाह की रहमत से, तो हमने बिस्मिल्लाह पढ़ी, आपने मैंने तो उठते बैठते क़याम वक़ूद वला जुनूबिहिम उसका नाम लेना है। तो अल्लाह का नाम लेने से ध्यान अल्लाह की तरफ जाता है। और सच्ची बात है कि अम्बिया का भी यही तरीका था। आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह हज़रत नूह का अमल सूरत हूद में आएगा, बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा। और आप पढ़ेंगे हज़रत सुलेमान के ख़त का वो अक्स जो मलका सबा को लिखा था, जिसमें उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जिक्र किया। और अल्लाह के नबी खतूत लिखते थे, आपका कलाम था, तो बिस्मिल्लाह की बात थी। तो क्या पता चला कि बिस्मिल्लाह इसलिए पढ़नी है कि हम इसका हक अदा करें। और एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है बिस्मिल्लाह पढ़ने का, नेमतों की तस्कीर हो जाती है। मसलन आप देखिए कि आप पानी पीते हैं, हम तो घट घट पीते हैं ना, ऐसे ही खड़े होके और पकड़े और जाए और सांस भूल रहे, नहीं। अब आप पानी पीते हैं, कहाँ से आया? आप कहेंगे मैंने फ्रिज में से बॉटल निकाली। बॉटल किसकी है? मसलन किसी भी ब्रांडेड नेम की है। उनको कहाँ से मिला? उनको किसी वाटर सप्लाई से मिला होगा। पीछे कौन है? बादल, समंदर, कुएं, दरिया। और इसी तरह से चश्मों से निकालता हुआ ये पानी कौन लाया? जब आप अल्लाह तक पहुंचना चाहते हैं ना, सिर्फ पानी का एक ग्लास काफी है। किसी की बहुत पहले की बात सुनी हुई कि तुम कहते हो हमें कोई सिखाने वाला नहीं आया, हम क्या करें, हमारा तो उस्ताद ही कोई नहीं, तेरे लिए तो दूध का एक ग्लास भी उस्ताद है। काली भैंस, भद्दी भैंस के जिस्म से सफ़ेद दूध निकालने वाला कौन है कि जिसके पेट में दूध की नालियाँ भी हैं, खून की नालियाँ भी हैं और पेशाब भी है, और सब साथ ही साथ है। ना कभी दूध में खून का रंग मिला कि सुर्ख दूध निकले, और ना कभी दूसरी चीज़ की स्मेल आई। तो कौन करता है? वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फिर तो खाना पीना भी इबादत है, ये खाना पीना इबादत है। ये फ्रूट चाट कहाँ से आ गई? ये केला क्या है? ये अंदर से इतना गोरा और बाहर से चितकबरा क्यों है? और अनार कभी देखा ही नहीं था पहले, ये क्या ले आए? एक गोल सा सुर्ख रंग का पत्थर, और जब छीला तो आंसू बहाते हुए जूस के कतरे। टेट्रा पैकिंग सबसे छोटी जहाज में मिलती है मेरे गुमान में, या बच्चों की स्मूदीज, आप कहते हैं ये 1 लीटर, ये 100 मिलीलीटर, सबसे छोटी पैकिंग सोचिए दुनिया में जो जूस की कहीं मिली होगी, वो आपको अनार के दाने में मिलेगी। सिंगल ड्रॉप पैकिंग, जरा छुरी हल्की सी किसी दाने को लग जाए उसके तो आंसू निकल आते हैं। कौन करता है? ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन कीजिए फ्रूट चाट बनानी मुहाल हो जाएगी आपको इफ्तारी के लिए, अगर आप अल्लाह का नाम लेते हुए फ्रूट काटेंगे, एक एक फ्रूट। और मैं तो काम करूं काम, और जब करूं तो मैं तो उन बेजान चीज़ों से बातें करने लगती हूं, तुझे किसने बनाया, तू कहां से आया, कितना एहतमाम किया उस रब ने, तो क्या फिर मेरा हक नहीं है कि मैं उसका नाम लूं? और देखिए कुरान पढ़ते हुए बिस्मिल्लाह, कश्ती में बैठते हुए बिस्मिल्लाह मजरेहा, घर में आते हैं बिस्मिल्लाह वलजनाल्लाह रब्बीना, घर से निकलते हैं बिस्मिल्लाह तवक्कलतुअल्लाह। बिस्मिल्लाह में अमान है। आप घर से निकलते हुए ये दुआ तो मांगिए, अल्लाह के हुक्म से आपके लिए घर में हिफाजत है। जो दरवाज़ा बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद कर दिया जाए शैतान उसको नहीं खोल सकता। रात को सोते वक्त अपने चिराग बुझाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। देखिए सारी चीज़ों को छोड़िए, इतने निजी मामले में भी बिस्मिल्लाह है। शौहर जब अपनी बीवी के पास आने लगे बिस्मिल्लाह ही, اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اور آخری بات، دنیا میں تو تھے ہی، دنیا سے جاتے جاتے قبر میں جب میت کو ڈالا جاتا ہے، بسم اللہ والا ملتی رسول اللہ، تو کیا پتہ چلا کہ بسم اللہ پڑھنا اللہ کی بڑائی کو ماننا ہے. تو پھر آپ نے میں نے کیا کرنا، بسم اللہ پڑھنی ہے ہر کام سے پہلے. بھول گئے تو بیچ میں پڑھ لیجئے، اور یہ نہیں کہا کہ بسم اللہ ہی اکل تو، بسم اللہ ہی اشربو، اللہ کے نام پہ کھاتی ہوں، اللہ کے نام پہ پیتی ہوں. آپ تھوڑی سی اس پہ توجہ دے دیں، آج ہی دے رہی ہوں، پھر زیادہ نہیں بات کر سکیں گے، کیونکہ یہ ہماری ہر سورت سے پہلے آنی ہے. تو جب آئے ان میں سے کوئی ایک چیز اپنے عمل میں اس دن ڈال لیجیے اپنی لسٹ میں، تاکہ آپ وہ کام کریں. دیکھیے بسم اللہ میں یا تو اسم محذوف ہے یا فعل. کیسے؟ یعنی یا تو کسی کا نام ہونا چاہیے تھا یا کسی کا کام. مثلا یہ ہوتا بسم اللہ ہی کھاتی ہوں، بسم اللہ ہی پیتی ہوں، بسم اللہ ہی پڑھتی ہوں، یا میں. کیوں؟ تاکہ ہر جگہ ہر موقع پہ یہ فٹ ہو جائے، قیامت تک کے لیے آنے والے لوگ اس کو اپنے لیے لیں. تو پھر کیا کریں، اپنا جائزہ لیجئے، میں کس جگہ بسم اللہ پڑھتی ہوں، کب نہیں، کب پڑھتی ہوں، کب بھول جاتی ہوں. اور خاص طور پہ جب دوسروں کو آپ بہت محبت دینا چاہتے ہیں نا، ہمارے بڑوں کا ایک عمل تھا کہ جب بھی کوئی ان کے گھر آتا تو کہتے بسم اللہ بسم اللہ، میری بہن آ گئی، دلہن کو آتا وزن میں لائیے. تو یہ ایک محبت کا انداز ہے، آپ دوسروں کو دعوت دیتے ہیں، آؤ میرے، آئیے آئیے. بچہ گرتا ہے بسم اللہ، گرتے کو اٹھایا بسم اللہ. تو ہماری تو نانیوں دادیوں کی ڈکشنری میں بسم اللہ تھی، اسی لیے پھر نسلیں بھی بڑی خوبصورت تھیں. انشاءاللہ قرآن پڑھنے کے بعد جب ہم اللہ تعالیٰ کا یہ نام لیں گے، تو بس پھر کہیے کہ ہماری زندگی میں یہ چیز آ جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ، بات تو لمبی ہوئی، لیکن مجھے امید ہے کہ یہ بسم اللہ میرا اور آپ کا رب جوڑ چکی ہوگی، مالک کے ساتھ، رحمان کے ساتھ. اور اب ہم بالکل لاک ڈاؤن کیفیت میں آ گئے. کس چیز کا لاک ڈاؤن ہے؟ لیکن ڈیلی آپ کو ایک ایک ٹپ دیتی جاؤں گی، لاک ڈاؤن کی بھی اور کرونا کی بھی، تھرو آؤٹ دا سفر، تاکہ آپ کو مجھے اس کا ایک نیا ہی رنگ دیں. کیونکہ کچھ لوگ تو کرونا کے بچاؤ کی باتیں کرتے ہیں، کچھ آپ کو ہاتھ دھونے کے مشورے دیتے ہیں، وہ سب اچھے ہیں، لیکن جو مشورے اللہ کی کتاب سے ملیں گے وہ کرونا کا انشاءاللہ سارا اثر ختم ہونے اور لاک ڈاؤن ٹوٹنے کے بعد بھی آپ کو یاد رہیں گے. تو کیا کیجیے اب اپنے آپ کو؟ لاک ڈاؤن کیجیے. کس کے لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے. لازمی ہے علم سیکھنے کے لیے لاک ڈاؤن. وتبتل الیہ تبتیلا، سورت مزمل میں اللہ نے کہا سب سے کٹ کر بس اس کی طرف ہو جاؤ. اور اللہ کے نبی غار حرا میں کیا کرتے تھے؟ سب کو پیچھے چھوڑ کر خود کو رب سے جوڑتے تھے. بی بی خدیجہ پہ رحمتیں ہوں، کیسے کھانے لا لا کر دیتی ہوں گی، کیسے اتنی اونچی پہاڑی پہ چڑھتی ہوں گی. تو یاد رکھیے، اس دین کو پہنچانے میں اگر ایک رسول کا کام ہے، ایک فرشتے کا کام ہے، تو ایک عورت کا بھی کام ہے کہ جس نے پیچھے رہ کر آج کے دور کے اس جملے کو کسی حد تک پروف کر دیا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہے. بیہائنڈ دا ایوری سکسیسفل پرسن دیر از اے وومن. کبھی وہ بہن ہوتی ہے موسیٰ کی بہن کی طرح، کبھی وہ ماں ہوتی ہے موسیٰ کی ماں ام موسیٰ، اور کبھی وہ اختہ ہارون ہوتی ہے، اور کبھی وہ امرأۃ الفرعون، اور اسی طرح کی چیزیں. تو آئیے ذرا اب ہم چلتے ہیں بسم اللہ کے بعد. ہم نے ابھی تک جو قرآن پاک پڑھا، میں چند جملے بولتی ہوں، ہر سال بولتی ہوں، آج آپ کے لیے تو ضرور بولوں گی، اس لیے کہ جو یہ چند جملے ہی لکھ پایا اور صرف اتنا ہی سمجھ کے اٹھا، تو امید ہے کہ اس کو یہ یقین ہوگا کہ قرآن بکھری ہوئی باتیں نہیں ہیں، سکیٹرڈ تھاٹس نہیں ہیں. ایک آیت میں یہ ہوتا ہے تو اگلی میں یہ آتا ہے، یہ ٹون میں نے سنی، اسی لیے تو میں بھی یہ مجبوراً اختیار کر کے بولتی ہوں اس میں کہ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں. قرآن کا آغاز ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریفوں، اس کی تقدیسوں سے بات شروع ہوئی. پہلی تین آیتوں میں ہم نے اپنے رب کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لیا کہ وہ رب بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے. محبت سے جب دل بھرا تو پھر کہہ دیا کہ یاد رکھو مالک یوم الدین بھی ہوں. کیسا پیارا بیلنس تھا اس کے اندر. کس طریقے سے اللہ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ میں ہوں بہت رحمان و رحیم، لیکن جب بدل کرنے پہ آتا ہوں تو پھر بچتا کوئی نہیں ہے. ساتھ ہی اپنی ہستی سمجھ آ گئی کہ یا کا نعبد و یا کا نستعین. یہ رشتہ تھا بندے کا رب سے، یہ ہے قسم تو الصلاۃ بینی و بین عبدی. ہم نے اپنی ہستی کو پہچانا اور پھر ایک دعا مانگی کہ مانگنے کی چیزیں تو بہت سی تھیں، لیکن میرے مالک میں تجھ سے وہ چیز مانگتا ہوں. कि अगर वो मिल जाए तो हर चीज़ नेमत है, और वो है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ए मालिक, मुझे सीधा रास्ता दिखा, हिदायत का रास्ता दे। क्यों लिखिएगा एक जेम, हिदायत वो मैजिक स्टोन है जिस नेमत के साथ लग जाता है तो वो फितना नहीं रहमत बन जाती है। मसलन अल्लाह ने आपको औलाद दी, औलाद नेमत, हिदायत मिल गई साथ कि इस बच्चे को कैसे ब्रॉट अप करना है, इसकी तरबियत कैसे करनी है, क्या करना है, बस वो बच्चा आपकी नेमत है। माल दिया अल्लाह ने आपको, माल अल्लाह सुबहाना ताला ने आपको दिया, ये नेमत है। लेकिन अगर आपको ये ना समझ हो कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो उसका जवाब क्या है कि आप इसको लेकर चलेंगे इस चीज के साथ कि मैंने अल्लाह की रहमत और उसकी दी हुई तौफीक के साथ हिदायत के साथ काम करना है। माल कहाँ लगाऊं, किसको लगाऊं, कैसे करूं, सारा माल अपने ही लाड़ देखने पे ना गुजर जाए। फिर इसके बाद देखिए, जब आपने कहे दीन सिरातल मुस्तकीम, तो अल्लाह ताला ने मेरी आपकी जुबान में पूछा होगा, रियली आर यू सीरियस, तुम्हें वाकई हिदायत चाहिए, तुमने फैसला कर लिया इस किताब को किताब हिदायत बनाने का, तो जालिकल किताब ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। लो फिर ये किताब है, इस किताब को ओवरलुक करके, इसको साइड पे रख के तुम्हें हिदायत नहीं मिल सकती। तुम आलिम बन सकते हो, मुफ्ती कहला सकते हो, शेख के दर्जे तक भी पहुंच सकते हो, लोगों के दिलों पे तुम्हारा रोब भी आता है, और तुम्हारी दोस्तें तुम्हें कहेंगी वाह एक और कोर्स कर लिया, मैं भी करती हूँ, और पढ़ लिया, एक डिग्री एक बैज ऑफ ऑनर तो लग जाएगा। लेकिन याद रखो, हिदायत नहीं मिलेगी। यहाँ एक बहुत ही शऊर दिलाने वाला जुमला भी नोट कर लीजिएगा, किताब से इल्म तो मिल जाता है, सब कुछ मिलेगा, लेकिन हिदायत तब मिलती है जब दिल में तड़प हो। तो आपने किताब मांगी, अल्लाह ने सूरत बकरा खोल दी। शुरू की 20 आयतों में हिदायत के एतबार से 3 गिरोहों का तذکرہ कर दिया, जिसमें मुफ्लहीन और सवाउन अलैहिम कह के गैर मुस्लिमों की बात की, कुफार, और आखिर में फिर नाम लिए बगैर अधूरी इताअत करने वाले गिरोह का जिक्र किया कि अब तुम अपने आप को देख लो। उसके बाद फौरन ही एक रुकू में पूरे मक्की दौर के कुरान का खुलासा दिया, तौहीद, रिसालत, ईमान बिल कुरान और ईमान बिल आखिरा, जिसमें जन्नत और जहन्नम दोनों आते हैं, और बीच में मच्छर की एक मिसाल देकर बता दिया कि किसी भी माशरे में फासिकीन का मिजाज या उनका किरदार, उनका रोल मच्छर वाला होता है। शुरू से कभी समझ ही नहीं आती थी कि मच्छर की बात बीच में क्यों आ गई, इतनी रकी कायतें पढ़ने के दौरान तो बता दिया कि वो लोग और वो अफराद किसी भी सोसाइटी के मच्छर हैं, खून चूसता है मच्छर, मलेरिया और डेंगू उससे फैलता है, वो लोग जो अल्लाह की इस किताब में बहसें करते हैं, ऐसे लोगों को फिर फासिकीन कहा गया। तो हम पहुंच गए हिदायत के एतबार से चौथे गिरोह में। आपको एक जुमला दे देती हूँ, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि मुनाफिक और फासिक में क्या फर्क है, तो अमूमन समझ नहीं आता, तो जुमला लिख लीजिए, मुनाफिक को कम अज कम इतनी शर्म तो है ना कि लोगों के अंदर मेरी इज्जत रहे, अंदर का खोटा बाहर का सच्चा, बन के दिखाता है कि मैं नेक हूं, अच्छा हूं। फासिक की तो ये शर्म भी खत्म हो गई। फासिक वो मच्छर है कि जो माशरे में बेहूदगी, न्यूडिटी और गंदा मवाद फैलाते हैं, गंदी चीजों को आम करते हैं, सिर्फ शोहरत पाने के लिए, सिर्फ एंटरटेनमेंट के नाम पे कि लोग खुश हों, तो ऐसे लोग तो फिर सबसे ही ज्यादा खतरनाक हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें फासिकीन का तारुफ भी करा दिया, और उसके बाद फिर इंसानियत में से पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम का तस्करा, और साथ ही साथ पहले दुश्मन और अदुव मुबीन का तस्करा, आदम और इबलीस की कहानी। आप देखिए कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजने से पहले ही जन्नत दिखा दी, क्यों, ताकि तुम्हें मंजिल का पता हो। अल्लाह सुबहान तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा तो किया ही जमीन के लिए था, कि वैस काल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दी, तो फिल अर्द का लफ्ज तो पहले से ही था। कई लोग कहते हैं हाय हाय आदम ने क्यों चखा फल, ना चखते ना दुनिया में आते, नहीं, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी, वो तो पैदा ही दुनिया के लिए किए गए थे। हाँ, बताया ये था कि अगर खिलाफत की जिम्मेदारियां पूरी कर लोगे ना, तो फिर उसके बाद तुम्हें जन्नत में वापस ले आऊंगा, यानी मदर होम दिखा दिया। और फिर उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्म दिया, इल्म की अर्ज, ख्वाहिश इंसान में डाल दी, याद रखिए कि जो खूबियां अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को दी थी ना, वदीयत करना कह लें, उनके अंदर डाली थी, आज उनकी नस्ल में भी हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जिसको आज डीएनए का असर कहते हैं कि बच्चे के अंदर माँ बाप और इंसेस्टर्स की सारी इंफॉर्मेशन और ये कुछ होता है। ये तो एक साइड की इश्यू है, लेकिन पहली बात तो अल्लाह ने ये बता दी कि तुम जानवरों की नस्ल से नहीं हो, तुम बंदरों की औलाद नहीं हो। डार्विनिज्म अपनी मौत आप मर जाता है सिर्फ इस एक जुमले पे जो यहाँ बयान कर दिया जाता है। और दूसरी बात है कि जितना ज्यादा आप इस चीज के ऊपर गौर व फिक्र करते जाते हैं ना कि इंसान बड़ी आला चीज है, उतना आपको फिर आला काम करना पसंद होता है। जो खुद को जानवरों से रिलेट करेगा वो जानवरों वाले काम करेगा। और इस थेरी के पीछे शायद यही मिथ है कि एक दफा ये मान जाओ कि इंसान बंदरों की औलाद है, जानवरों की औलाद है, तो दूसरे काम करने आसान हो जाएंगे। मसलन जानवर कपड़े नहीं पहनते तो फिर हमारे लिए भी आसान है न्यूट होना। जानवर एक खास हद तक अपने बच्चों को तो अपने साथ रखते हैं, बूढ़े माँ बाप को नहीं रखते। तो हम भी चंद महीने और कुछ साल अपने बच्चों को तो टेक केयर करेंगे, बूढ़ों को पकड़कर ओल्ड होम्स में डाल देंगे। अब हुआ क्या, आपने जब ये असूल माना तो आपके जीने के अंदाज जानवरों वाले हो गए, एनिमल इंस्टिंक्ट पे फिर जीने लगे। इंसानियत को आज यहाँ तक गिराया गया, अल्लाह ने फरमाया नहीं। फिर अगली चीज देखिए कि आदम अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला ने आपको मुझे ये सिखा दिया कि गुनाह हो जाए। वल्लम आदम अलस्मा कुल्लहा, दुनिया का इल्म भी अल्लाह ने दिया, और इसके साथ ही गुनाह पे तौबा, रब्बना ज़लमना अनफुसना, अपने गुनाह के ऊपर शर्मिंदा होना, ये आदम के जरिए अल्लाह ने आदम की औलाद को सिखाया। और ये भी सिखा दिया कि इबलीस इबादत करने के बावजूद इताअत ना कर सका। रब को रब मानता था, यानी रबूबियत का कायल था, क्योंकि रब्बी फंजिर नीला योम योबासून कहता है। ये भी मानता था कि दुआएं अल्लाह ही सुनता है, और ये भी पता था कि क्यामत आएगी। यानी अपने लफ्जों में सिर्फ समझने के लिए जुमले लिया करें, इनको आगे ऐसे ना पेश किया करें कि दूसरे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सुनकर परेशान हो जाए। इबलीस की तौहीद भी ठीक थी, ईमान बिल आखिरा भी था, दुआएं भी अल्लाह ही से मांग रहा है, लेकिन कमी किस में थी, सजदे का इनकार, अधूरी इताअत। बहरहाल वहां से आदम अलैहिस्सलाम निकाले गए, तो पहले इंसान का किस्सा पढ़ने के बाद फिर आयत नंबर 40 से लेके अभी तक जहां हम खड़े हैं, माजी के मुसलमानों का जिक्र है। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को वॉर्न कर रहे हैं कि देखो कल उनको जो जिम्मेदारी दी थी आज वो तुम्हें दी गई है, जो उन्होंने किया तुम भी वही करोगे, तो जो उनका अंजाम हुआ वही तुम्हारा होगा। और इसमें पढ़ते पढ़ते बनी इसराइल की 40 साल हिस्ट्री से जायद हिस्ट्री हम देख चुके, कैसे उन्होंने फिरौन के चुंगल से निजात पाने के बाद फिर बछड़ा पूजना शुरू कर दिया, और कुछ अब कुछ चीज़ें हमारे सामने आगे आने वाली हैं। यानी हम बिल्कुल अब पारे के उस मुकाम पे खड़े हैं, इमेजिनेशन में लाइए कि जहाँ बनी इसराइल एक कल्ट बन चुका है, दो तबकों में डिवाइडेड है, ये उलमा का तबका, ये आलिम हजरात हैं, और बाकी सारे उम्मी हैं, अनपढ़। आज हमारा भी यही हाल है, हमने ये कभी सोचा भी नहीं कि एक शख्स सब कुछ कर सकता है, अपनी बच्ची का निकाह बाप भी पढ़ा सकता है और जवान बेटा अपने बाप का जनाजा पढ़ा सकता है। हमने भी यही किया, जैसे पीछे मूसा की कौम ने हर काम मूसा से करवाया, हत्ता कि दुआएं भी मूसा से मंगवाई। तो आज हमारा एक बहुत बड़ा फितना और मसला ये भी है कि हम उलमाए कराम को इतना मसरूफ रखते हैं, QA सेशंस में फतवे उनसे मांगते हैं, निकाह पढ़ाने के लिए इमाम साहब को बुलाएंगे, जनाजा पढ़ाने के लिए, और बल्कि किसी मुशक्कत में पढ़े बगैर इमाम साहब को कहते हैं कि आप अपने साथ रब 20-25 बच्चे ले आइए, कुरान खानी करानी है, हम बाद में खाना वगैरह खिला के कुछ खिदमत कर देंगे। याद रखिए, ये किसी कौम के जवाल की अलामत है कि वो अपनी रूहानी जरूरियात भी किसी और से पूरी करवाने लगे। तो आइए दोबारा तर्जमा शुरू करेंगे आयत नंबर 78 से, और अब आप बस कुरान के टेक्स्ट पे नजरें डालेंगे ताकि यह आपके दिल में उतरे और आप इससे फायदा ले सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम व मिनहुम उम्मीयून ला यालमून अल किताब इल्ला अमानिय्य व इन्हुम इल्ला यज़ुन्नून व मिनहुम उम्मीयून ला यालमून अल किताब। इनमें से बाज़ अनपढ़ ऐसे भी हैं जो किताब के सिर्फ ज़ाहरी अल्फाज को ही जानते हैं, सिर्फ गुमान और अटकल ही पर है। चंद सेकंड के लिए सोचिए, क्या आज हम में से अक्सरियत कुरान को ऐसे नहीं पढ़ती, सिर्फ अरबी आती है? क्या कुरान पढ़कर कुछ समझ भी आता है? बनी इसराइल में भी एक ऐसा दौर आया था कि इनकी अवाम का, आम लोगों का, रईयत का किताब से बस यही ताल्लुक रह गया था। और जब दीन पर चंद लोगों की जारादारी कायम कर दी जाए और खुद जाहिल रहा जाए, और जब इल्म के लिए वक्त ना निकाला जाए, हत्ता के लॉकडाउन के दिनों में भी ना निकाला जाए, खबरें सुनी जाएं, अपडेटेड रहा जाए, तरह तरह के खाने पकाए जाएं क्योंकि बच्चे घर में हैं, और फिर भी आप बैठकर 2-2.5 घंटे में एक पारा ना सुन सके, तो ज्यादती पढ़ तो लेते हम, सुनते नहीं है। या फिर तर्जमा पढ़ते तो हैं, तर्जमा सुनते नहीं है। याद रखिए, एक छोटी सी साइड की बात नोट कर लें, क्योंकि ये आज हमारी उम्मत की मिसाल बन चुकी है। कुरान का मिजाज पढ़ने से ज्यादा सुनने का है। इसकी दलील आपको 21वें पारे में मिलेगी इंशाल्लाह। पढ़कर सुनाइए, क्योंकि यही बात जो अभी बोली जा रही है, अभी तर्जमा आपके सामने है, इसको और लिखे हुए को पढ़ने में आपको फर्क लगेगा। ये तो ऐसे ही है कि जैसे माँ बेटी दिल की बातें करने की बजाय लिख लिख के कर लें, बैठ जाएं दोनों कापियां लेकर, तुम लिखो मैं जवाब देती हूँ। लिखे हुए लफ्जों में जज्बात नहीं होते, तो लिहाजा नियत कीजिए कि हमने उम्मी नहीं रहना। असल अनपढ़ वो है जिसको अपनी किताब समझना है। ऐसे लोगों का अंजाम इन लोगों के लिए वैल है। फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम, ये वो लोग हैं जो किताब पढ़ने की बजाय अब उसमें से अपनी मर्जी के शोशे निकालते हैं। इन लोगों के लिए वैल है जो अपने हाथों की लिखी हुई किताब को अल्लाह ताला की तरफ की कहते हैं और इस तरह दुनिया कमाते हैं। इनके हाथों की लिखाई को और इनकी कमाई को हलाकत और अफसोस है। नोट कीजिएगा ये जुमला, दुनिया में कोई किसी की किताब को अपनी किताब कह दे तो इसको क्या कहते हैं? जुर्म है ना। कॉपीराइट्स का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। अक्सर किताबों के शुरू में राइटर्स ने ये जुमले लिखे होते हैं कि इस किताब की कोई कॉपी, कोई नकल, कोई रिकॉर्डिंग जायज नहीं, और इसी तरह की बातें। हम सब इससे आगाह हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो दीन के ठेकेदार बन जाते हैं। आज हमारी उम्मत इतने शौक से कुरान नहीं पढ़ती जितने शौक से अपने उलमा की किताबें पढ़ती है। ये किताब फुला आलिम ने पढ़ाई, बस अब यही पढ़ो, और ये नमाज की किताब फुला नाम से आ गई, बस यही पढ़ो तो लिखिएगा। बड़ी जुरत की बात है। इस वक्त अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं ना, और कोई इसको अपनी बात करके पेश कर दे, और खास तौर पे दुनिया कमाना, इसके छोटे छोटे फायदे इससे लेना, इससे बचने की जरूरत है। यहाँ बजाहर दुनिया कमाना मुराद है, लेकिन इससे मुराद दुनिया के पैसे नहीं। बस अगर कोई आपके बच्चे को कुरान पाक पढ़ाता है और आप उसको कुछ देते हैं, ये मुराद नहीं है। मुराद ये है कि इस किताब को अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करना। एक जेम ले लीजिए, जब दीनदारी दुकानदारी बन जाती है तो मुकम्मल इताअत नहीं होगी बल्कि अधूरी इताअत होगी। आज यही है, अल्लाह ताला हमें ऐसे वक्त से बचाए जब लोग असल किताब छुपाएं और अपनी ही की हुई चीजें पेश कर दें। आज जाइए 10 लोगों को पकड़िए, बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी उन्होंने, उलमा की लिखी हुई, कोई फजाइल के नाम पे, कोई मसाइल के नाम पे, कोई अकीदे के नाम पे, कुरान नहीं पढ़ा होता। आज कुरान भी पढ़ें तो 5 सूरे में से पढ़ते हैं, ये भी एक जुर्म है आज का। 5 किताब के सफ़े फाड़िए, उसको री सॉर्ट कीजिए और वो बुकलेट सा दे दीजिए, जाओ भाई पढ़ लो, पास होगा बच्चा इम्तिहान में, रिजल्ट क्या आएगा उसका। आज हमारी उम्मत के उम्मीद रहने की ये वजह। फातिहा से नास तक तो कम ही पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं 5 सूरा। और मैं सोचती हूँ कि अगर 5 सूरे में भी हम सूरत फातिहा, सूरत बकरा, सूरत सजदा, सूरत मुल्क और सूरत अलसर डाल देना, ये 5 सूरा दे दें लोगों को ना, कि जाओ इसको समझ समझ के पढ़ो। तो ये तो मैंने 5 कह दी। मुफस्सरीन तो कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला सिर्फ सूरत अलसर नाजिल कर देता तो हिदायत के लिए वही काफ़ी थी। तो बात यह है कि हम हिदायत के लिए पढ़ते ही कब है। हम तो सूरत यासीन, सूरह रहमान और इसी तरह सूरत वाकया पे चले ही नहीं। 5 सूरों को, जो 5 सूरा इसी के तर्जमा और तफसीर के सेट बनाकर दे दीजिए तो शायद लोगों को फ़ायदा हो जाए। हमने एक बुकलेट बनाया हुआ है जिसमें कुरान की किरणें के नाम पे मुख्तलिफ सूरतों को जमा किया गया है। तो दुआ कीजिए कि उम्मत से ये जहालत के अंधेरे चले जाएं, क्योंकि पैशन ही है, दिन रात का काम ही है, ख्वाहिश तमन्ना खुशी गम का असल सिरा ही ये है। तो ऐसी बात पे फिर दिल से बातें निकल आती हैं। दुआ कीजिए अल्लाह मुझे और आपको इस पैगाम को वहाँ वहाँ तक पहुँचाने की तौफीक दे जहाँ हम पहुँचा सकते हैं। सीधी सी बात है, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, और अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी और दूसरों की हिदायत का जरिया बना दें। अब सीक्वेंसेस देखिएगा, आफ्टर इफेक्ट्स किस बात के, कि जब असल किताब तो छुप गई तो उसकी जगह लोगों की बातें दीन बन गई, और रिवायतें और फजीलतें दीन की जगह आ गई तो खुशफहमियां पैदा होती हैं। इसी में से एक खुशफहमी आयत 80, वकालू लन तमस्सना नारु इल्ला अय्यामन मअदूदा। ये लोग कहते हैं हम तो चंद रोज जहन्नम में रहेंगे। इनसे कहो कि तुम्हारे पास क्या अल्लाह का कोई इजाजतनामा है, यानी कोई परवाना मिल गया तुमको, परमिशन लेटर है, नो ऑब्जेक्शन लेटर है कोई? नहीं है। अगर है तो फिर यकीनन अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा, बल्कि तुम अल्लाह के जिम्मे वो बातें लगाते हो जिन्हें तुम नहीं जानते। तो खुशफहमियां पैदा हो जाती हैं उन लोगों में जो कुरान की बजाय इधर उधर की बहसों में पड़े रहते हैं। यकीनन जिसने बुरे काम किए और इसकी नाफरमानियों ने इसे घेर लिया, वो हमेशा के लिए जहन्नमी है। जरा सा इस एक आयत पे भी गौर कीजिए, बला मन कसब सईयत वाहतत बिही खतीयतुहु। यहाँ लफ्ज़ के सईया, एक नाफरमानी ही काफी है जहन्नुम में जाने के लिए, क्योंकि सईयात होता ना तो जमा। और एक जुमला लिखे कि एक कबीरा गुना काफी है हमें जहन्नुम में गिराने के लिए, अल्लाह बचा के रखे। और अहातत कैसे होते हैं गुना? देखिए पहला गुना ही बस मुश्किल है, अगले गुना तो सर उठा उठा के कहते हैं कि मुझे भी करो और मेरे पास भी आओ। जब आप पहला गुना करें और ना डरें, बल्कि उसकी लॉजिक्स पेश करें और ये बोलें कि आज तो सब करते हैं, ये आज कौन सा दौर है, और चूंकि हम वेस्ट में रहते हैं तो ये करना पड़ेगा, देखो 2020 आ गया तुम फिर कुरान कुरान की बातें करते रहते हो, यानी बंदा गुनाह करे और ना डरे तो अहातत बिही खतीयतुहु की कैफियत है। मैंने जब शुरू में बिल्कुल जब इस आयत को समझा ना, तो मैंने एक छोटा सा ऐसे मैप बनाया हुआ था अपने नोट्स में, एक नुक्ता जिसके ऊपर गुना सिन, फिर उसके इर्द गिर्द एक दायरा, कंपस से जैसे दायरे नहीं डालते वैसे डाल ले। ये होता है पहला गुना करते वक्त आप आजाद हैं करें कि ना करें। बस एक लड़की है, उसकी बिगड़ी हुई कोई दोस्त है फ्रेंड, कहती चलो आज स्कूल से जरा ब्रेक में बाहर जाते हैं, पहले तो ये जाना नहीं चाहेगी, और अगर वो जोर लगाएगी तो डरेगी, कोई नहीं आ जाएंगे स्कूल टाइम से ही पहले ही आ जाएंगे, घर वालों को पता ही नहीं चलेगा। निकली, किसी होटल में पहुंची, देखा कोई लड़का पहले से बैठा है, अब तो इसका हाथों का कह लीजिए कि रंग ही बदल जाए, कैसे बैठी होगी जरा महसूस कर सकें तो करें। वो लड़की शायद उस लड़के के साथ इंजॉय कर रही है चाय के कप को, इस कोई की गम है किसी तरह आज बच के घर पहुंचो। खैर अल्लाह अल्लाह करके वो पहुंच गई, और बदकिस्मती से किसी को ना पता लगा। बदकिस्मती इसलिए कि पता लग जाए तो ये दरवाजा इधर ही बंद हो जाएगा, ना पता लगा एक हफ्ते बाद दोबारा वो लेगी ना, तो वो इतना गमजद है, वो कि चलो ना कुछ भी नहीं हुआ, देखो उस दिन भी आ गए थे आज भी चलते हैं। तो फिर अहातत बिही खतीयतुहु होता है, पहला गंदा क्लिप कोई दिखाता है उसको, कहीं से पॉपअप हो गया, फिर अगले खुद ही देखने लग जाते हैं। इसके लिए काम कीजिए, दरवाजे बंद कर दीजिए। और रमजान तो आ ही रहा है, अधूरी इताअत की एक बहुत बड़ी वजह क्या है कि हम नेकियां भी करते रहते हैं और गुनाह नहीं छोड़ते। तो नेकियां करेंगे तो गुनाह नहीं छोड़ेंगे, तो डिलीट होती जाएंगी चीजें साथ साथ, जिसको कहते हैं ना क्रॉस मार्किंग होती है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी नस्लों को भी ऐसी तमाम चीजों से दूर कर दे और इससे हम बच सकें। फौलाई का साबुन नारी हम फी खा खालिदून, फिर हमेशा के जहन्नमी और उसमें रहने वाले, यानी दुनिया में अंधेरे पसंद किए थे जहालत के, अल्लाह ने जहन्नम के अंधेरे दे दिए। इसके बरक्स आपकी मेरी दुआ और ख्वाहिश और टारगेट, वल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाती उलाइका असहाबुल जन्नति हुम फीहा खालिदून, और जो लोग ईमान लाएं और नेक काम करें वो जन्नती हैं, जो जन्नत में हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला आपको मुझे इस जन्नत को पाने के लिए मुकम्मल इताअत की तौफीक दे, कटी फटी अधूरी नेकियां नहीं करनी। और अब इसके बाद दोबारा देखिए बनी इसराइल का तذکرہ एक नए ही रंग में। 10 कमांडमेंट का नाम आपने सुना होगा, अहकामे अशरा भी बोलते हैं इसको, बस ये उसी का मजमुआ है। आयत 83 का टॉपिक आप लिख सकते हैं चाहें तो, कि बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने जो शरीयत दी थी वो अधूरी नहीं पूरी थी, क्या किया उन लोगों ने। आइए अगली चंद आयतों को पढ़कर, इसी में हमारे पारे की थीम आयत है, फिर उस पर बात करेंगे। वही सख्स नमी साक बनी इसराइल, और जब हमने बनी इसराइल से वादा लिया कि तुम अल्लाह के सिवा दूसरे की इबादत न करना और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, इसी तरह कराबत दारों और यतीमों और मिसकीनों के साथ और लोगों को अच्छी बातें कहना, कुलुल नासी हुस्ना, हाईलाइट कर लीजिए, अच्छी बात बहुत बड़ा मुकाम रखती है। अखलाक अच्छा होगा तो अल्लाह ताला आपसे काम भी अच्छे करवाएगा। نمازیں قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، لیکن ہوا کیا؟ لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو ہمیشہ ہدایت نامہ دیتا ہے بہترین طریقے سے، کریکٹر بلڈنگ کی سب باتیں ہیں، اور آج بھی امت مسلمہ میں یہی چیزیں ہیں۔ یاد رکھیے کہ ان کو امہات الشریعہ کہتے ہیں، ساری شریعتوں کی ماں، روٹ کاز آف آل، اور یہ کبھی نہیں بدلی۔ حضرت نوح سے لے کر آج تک امت مسلمہ میں کچھ بیسکس نہیں بدلے، کچھ چیزیں وقتی ضرورت کے تحت معاملات کی بدلیں اور کچھ ایسے احکامات بدلے گئے، باقی چیزیں کامن ہیں۔ بنی اسرائیل کو ایک خاص حکم دیا گیا تھا، آیت 84 میں دیکھیے گا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، یعنی قتل و غارت نہ کرنا، اور آپس والوں کو یعنی اپنے ہی ہم مذہب لوگوں کو جلا وطن مت کرنا، مطلب ان کو اپنے ملکوں سے نہ نکالنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس کے گواہ یعنی شاہد بھی بنے۔ کیا پتہ چلا کہ تمہیں اللہ نے حکم دیا یہ سب کچھ کرنے کا، لیکن تمہارا حال کیا تھا؟ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو؟ یعنی تم نے کیا کیا؟ ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسرے کی طرف داری بھی کی۔ ہاں جب وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہ کیا۔ اللہ اکبر، یعنی ابھی تک کی بات کا خلاصہ کہ آدھی چیزوں کو تو مانا اور آدھی کو چھوڑا۔ اگر آپ ترجمے پہ غور کریں نا تو بنی اسرائیل کو چار باتوں کا حکم تھا، اس کی ڈیٹیل آپ سن سکتے ہیں انہی آیتوں کی ڈیٹیل تفسیر میں۔ یہاں ذرا جو حکم ہے وہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے چار میں سے تین احکامات کو تو پس پشت ڈال دیا، اللہ تعالیٰ کی یہ بات ان کو اچھی ہی نہ لگی، لیکن چوتھا کام نمائشی نے کی، جس میں شہرت ہوتی، جس میں دکھاوا ہوتا، وہ کرنے لگے۔ دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ پک اینڈ چوز۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ یہ کمنٹ دیا، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا بعض احکامات پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی ایسا کرے، یہ جو بھی پہ غور کیجئے، صرف بنی اسرائیل نہیں، آج کے امت مسلمہ کے لوگ بھی ایسا کام کرے، اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن عذاب کی مار، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خریدا، ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بہت ہی رقت دلانے والی آیت ہے، یہ اس پارے کی تھیم آیت بھی ہے کہ دین کے کچھ حصوں پہ عمل کر لینا اور کچھ کو چھوڑ دینا اللہ کے دین کو تماشا اور کھیل بنانا ہے، اور کیا آج نہیں ہے ایسا؟ ذرا سا اس پہ غور کریں گے، اور ہر پارے میں سے تدبر کی آیت ہماری انشاءاللہ تھوڑا سا ٹائم لے گی۔ آپ کسی بھی ملک میں رہیں اور ساتھ ہی اعلان کر دیں کہ کچھ قوانین تو مانوں گی، کچھ کا انکار کروں گی، تو کیا وہ آپ کو وہاں رہنے دیں گے؟ آپ اپنے گھر سے زیادہ دن جیل کی کال کوٹریوں میں رکھے جائیں گے؟ آدھے نوٹ سے دودھ کی ایک بوٹل آتی ہے؟ مثلا آپ جس ملک میں بھی رہتے ہیں اس کو ذہن میں لائیے، مثلا یو کے میں دودھ کی بوٹل 5 پاؤنڈ کی آتی ہے۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ آپ کی جیب میں رکھا ہوا نوٹ پھٹ گیا، 10 کا تھا، 5 کا نہیں ہے۔ آپ وہ 10 پاؤنڈ کا نوٹ جو کٹا ہوا ہے کاؤنٹر پہ لے جائیے اور کہیں دیکھو اس کو 5 سمجھ لو اور لے لو۔ آدھے نوٹ سے دودھ کی بوٹل نہ آئے، کیا آدھی اطاعت سے جنت ملے گی؟ آج امت مسلمہ میں بہت سارے لوگ آدھے نوٹ سے جنت خریدنے کے گاہک ہیں، کیا آج ہم نے اپنے دین کا یہ کھیل تماشا نہیں بنا دیا؟ نماز دین کے مطابق، شادی دنیا کے مطابق، روزہ دین کے مطابق، تجارت کیا نام لوں، کن کے پیچھے لگتے ہیں، کن کے کرنے والے کام آج امت مسلمہ میں آگے؟ کیا آج ہم نے دین کو چوں چوں کا مربع نہیں بنا لیا؟ کیا آج واقعی وہ بات ہے کہ بلنڈر میں ڈالی ہوئی سمودی نہیں بنا دیا، کوئی نہیں پتا چلتا کیا نہیں ڈالا، خیر ہے جانے دو۔ آج بہت سارے مسلمان یہی سوچتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، کچھ کرتی بھی تو ہوں نا، نماز نہیں پڑھی، کیا ہوا اگر کپڑے ایسے پہن لیے، اور کیا ہوا یہ اور وہ۔ ایک اور مثال لیجیے، آپ دیکھیے کہ واشنگ مشین خراب ہے، آپ مکینک کے پاس لے جائیں، وہ اس میں بلنڈر کا ایک پرزہ لگا دے، कोई एक तार आपकी गाड़ी में से निकला हुआ लगा दे, क्या वो वॉशिंग मशीन चलेगी? नहीं चलेगी। आज हमने दीन इस्लाम की मशीन में कुछ पुर्जे कुफर के और कुछ दूसरे मजाहब के और कुछ तो बिल्कुल ही बेदीनों के लगा दिए। वही याद कर लीजिए अल्लामा इकबाल का शेर के वज़ा में हो तुम कुछ और फलां और कुछ, सबको ही आता है, वक्त उर्दू बोलने वाले इस शेर को जानते हैं। आज हमने यही किया। आपकी गाड़ी का सिर्फ एक तार मिसिंग हो, ओनली वन वायर, चलती है? चलिए ये जो ब्रॉडकास्ट है आपके मेरे पास, सिर्फ एक चीज मिसिंग हो, एक नेट की ना हो और एक चीज ना हो, आप कनेक्ट होते हैं? तो मेरा ख्याल है कि आपको मुझे ये बात समझ आ गई। अल्लाह को रंग बिरंगा मुसलमान नहीं चाहिए, टाई एंड डाई मुसलमान नहीं चाहिए अल्लाह को। हकीकत ये है कि अधूरी इतात का नतीजा क्या निकलेगा, गौर से सुनिएगा, बात बहुत बोझिल है। क्योंकि ये आयत समझ ली तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक का पारा जस्ट हो जाएगा। आप देखिए कि आप अमेरिका से पाकिस्तान आते हैं, या आप अमेरिका से इंडिया आते हैं, या आप पाकिस्तान से बांग्लादेश आते हैं, आपकी ख्वाहिश क्या होती है? डायरेक्ट फ्लाइट मिले, ठीक है, थोड़ी ज़्यादा देर बैठना तो पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर मिनट हम अपनी डेस्टिनेशन के करीब हो रहे हैं। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपको बीच में यूरोप में एक स्टॉप दिया जाए, फिर एक यूएई में दिया जाए और फिर आप अपने मदरलैंड पहुंचे? कोई नहीं चाहता। हम डायरेक्ट फ्लाइट चाहते हैं। तो जुमला लिखिएगा, पूरी इताअत करने वाले डायरेक्ट फ्लाइट से जन्नत में पहुंचेंगे। हत्ता कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक मोमिन जब इस दुनिया से जाता है तो उसके जिस्म पर कोई गुनाह नहीं रहता। जो छोटे मोटे होते हैं ना, अल्लाह ताला वो निज़ाम में माफ़ करवा देते हैं। डायरेक्ट फ्लाइट के साथ जन्नत में पहुंचना और बात है, इसके बरक्स अधूरी इताअत के नतीजे इनडायरेक्ट फ्लाइट्स मिलेंगी। और कैसे? अधूरी इताअत का नतीजा जहन्नुम के रास्ते से गुजर कर जन्नत में पहुंचना। जी अल्लाह ना करे कि हम में से किसी का स्टॉप ओवर पुलसरात पे हो जाए कि इधर आओ ना जरा, ये क्या करके आए हो, या फिर अल्लाह ना करे जहन्नुम में गिराया जाए। हदीस मौजूद है, एक नहीं बहुत सारी, कि गुनाहगार लोगों को पहले अल्लाह जहन्नुम में डालेगा, फिर जब तक रखना चाहेगा, फिर वहां से निकालेगा, फिर जन्नत में आएगा। तो आज थोड़ी सी ख्वाहिश आपको मुझे कहीं जहन्नुम का कुछ झोंका ना बर्दाश्त करवाने लगे। और यहाँ भी आप देखिएगा कि मुआशरा ही है, खानदान ही है, और अल्लाह ने ये सारी खुशफहमियाँ तो पहले ही दूर कर दी कि आप अपने आप को गुनाहों से बचा लें। जितना ज्यादा आपकी मेरी जिंदगी में शऊर आता जाएगा, अल्लाह ताला आसान करेगा। और एक छोटी सी चीज आयत 86 पे भी गौर करने की है, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की जिंदगी को आखरत के बदले खरीदा। आप देखिए जब कोई आजमाइश आती है ना, तो घर की चीजें बिकती हैं, वो चीजें जो इस्तेमाल नहीं हो रही, बेकार पड़ी, उसको जाके बेच दो। सोना क्या करना है, रख के बच्चों को तो रोटी चाहिए, जाओ सोने का जेवर बेचो। कुछ लोग हिदायत को जाकर बेचते हैं और उसके बदले में गुमराही लाते हैं। कैसे? जब भी कोई आजमाइश आएगी, फितना आएगा, लोग हिदायत को पीछे करेंगे। तो खुद से एक सवाल कीजिए, क्या मैं आजमाइश के वक्त पे हिदायत को बेच कर गुमराही तो नहीं ले आती? और अल्लाह ताला आपको मुझे इससे महफूज रखे। आगे देखिए आयत नंबर 87 से, वलकत आत ई नमूसल किताब, हमने हजरत मूसा अलैहि सलाम को किताब दी और इनके पीछे और रसूल भेजे, और हमने हजरत ईसा इब्ने मरियम को रोशन दलीलें दी और रूहुल कुदस से इनकी तायीद करवाई, वेरीफाई करवाया। लेकिन जब कभी तुम्हारे पास रसूल वो चीज लाए जो तुम्हारी तबीयतों के खिलाफ थी, तुमने झट से तकबर किया, बस बास को तो झुटला दिया और बास को कत्ल भी कर डाला। इसमें से अगर आप नोट कर लीजिए, क्या चीज छोड़ी? बिमा ला तहवा अनफुसुकुम, ख्वाहिश नफ्स। अधूरी इताअत की एक बहुत बड़ी वजह पीछे भी पढ़ा है, यहाँ भी नोट कीजिए, ला तहवा अनफुसुकुम, दिल नहीं मानता, हाय ये नहीं मैं पहन सकती, ये हाल उले, ये गेटअप नहीं। यानी इबादत वाली नेकियां आसान, लाइफस्टाइल को बदलने वाली मुश्किल। और इस तकबर, तुम तकबर खुद को बड़ा समझते हैं, क्या हुआ हम बड़े? यानी जो अल्लाह का हुक्म ना माने और अपने नफ्स का माने, अपने रब को रब बनाने की बजाय नफ्स को इलाह बना ले, उसको रब बना ले, तो फिर तो वो यही करेगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं फिर ऐसे लोगों का इंजाम क्या है, खुद ही देख लें। वकालु कुलूबुना गुल्फ, आयत 88 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये कहते हैं कि हमारे दिल गिलाफ वाले हैं, यानी स्टबन हो गए। कहते हैं हमें जो मर्जी कह लो हमें नहीं असर होना, हम तो सुन सुन के सुन हो गए। हर साल आप यही बातें कहती हैं, कहती रही, इस साल भी कह लें, हमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, बल्कि इनके कुफर की वजह से इन्हें अल्लाह ताला ने मलऊन कर दिया, यानी अपनी रहमतों से दूर। इनका ईमान बहुत ही थोड़ा है اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، مراد قرآن آیا اہل تورات والوں کے پاس، حالانکہ پہلے وہ خود اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہو ایسے منکروں پر۔ تورات کی وہ آیات جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر تھا، ایک ایسا دور گزرا کہ یہود کے لیے وہ بڑی معتبر تھی۔ جب کسی مارکے میں جاتے، کوئی جنگ ہوتی یا کوئی اور میدان، تو وہ صفحے کھولتے اور پھر اللہ سے رو رو کے دعا مانگتے کہ اللہ، یہ جس آخری نبی کا تو نے تذکرہ کیا ہے نا، ہم اس کی بات کر کے تجھے کہتے ہیں کہ ہمیں فتح دے۔ یعنی اپنی زبان میں انہوں نے کوئی وسیلہ بنایا ہوگا۔ اللہ بھی دیکھیے کیسے آزماتا، اللہ تعالیٰ ان کو فتح دیتا تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ۔ اس کو بھی ہائی لائٹ کریں، ترجمے کا یہ حصہ نوٹ کیجئے گا۔ بعض دفعہ ہم وہ چیزیں، وہ مواقع جو مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی موقع ملے نا، کبھی کوئی سکھانے والا آ جائے، کبھی کوئی پڑھانے والا آ جائے، کبھی کوئی بتانے والا آ جائے، لیکن جب وہ آتا ہے تو ہم انکار کرتے ہیں۔ اور انکار نہیں کر رہے ہوتے، نہیں نہیں ابھی مشکل ہے، اس وقت بزی ہوں، آج کل نہیں، پھر دیکھیں گے۔ یعنی انسان کی یہ کمزوری ہے کہ گھر آئی چیز کی قدر نہیں کرتا اور دوسری چیزوں کو لینے کے لیے بھاگتا ہے۔ گھر کی مرغی کس کے برابر ہے، یہ آج کل آپ ریٹ لسٹ سے جا کے دیکھ لیجئے۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ دور کی چیزوں کو چونکہ دور سے دیکھتے ہیں نا، تو ان کو لوپ ہولس نہیں دکھتے، تو وہ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، بھاری قیمت دے کے وہ لینے کو تیار ہیں۔ گھر کی چیز مفت میں بھی کوئی دے تو کہتے ہیں یہ تو ہے ہی نا، یہ تو ہو گئی نا، یہ تو اپنی ہے۔ نہیں، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ پھر ایک نعمت چھینتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ توفیق چھین لیتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے کہ میرے آپ کے ساتھ ایسا ہو۔ آیت 90، بھی سمجھتا رہو بھی انفسہم، بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی خود کو بیچتا ہے؟ سوچیے ذرا، اللہ نہ کرے کوئی اپنا جسم بیچے، اپنا گردہ بیچے بھوک کے ہاتھوں۔ دل کھول کے صدقہ خیرات دیجئے ایسے لوگوں کو جو آج کل کے لاک ڈاؤن سے متاثر ہیں۔ کوئی گردہ بیچ کے واپس نہیں لا سکے گا، آپ کو تو جو اللہ نے دی ہے پھر واپس مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ محض اس بات سے جل کر کہ اللہ نے اپنا فضل جس بندے پر چاہا نازل فرمایا، اس کے باعث سے لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ حسد کا جذبہ اتنا برا جذبہ ہے کہ انسان دوسرے کی نعمت سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اس کی نعمت کے بھی چھیننے کی تمنا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ ہمارے فرقے سے کیوں نہیں، یہ ہماری جماعت اور گروہ سے کیوں نہیں، اور یہ بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل سے کیوں نہیں آگے۔ چلیے، کل تو وہاں سگے سوتیلے بھائی کا مسئلہ تھا، آج امت مسلمہ میں آپ کو یہ آوازیں نہیں ملتی؟ ہمارے گروہ کے ہوتے تو ہم سپورٹ کرتے، یہ ہمارا فلاں فارم فل کر دیں، یہ عقائد مان لیں، ہم ان کی بات کو لینے کو تیار ہیں۔ یاد رکھیے، بظاہر دین سے دور لوگ، بظاہر دنیا کے اچھے کام کرنے والے لوگ دین کو قبول کر لیں گے، لیکن دین کے نام پہ کچھ کرنے والے کسی دوسرے دیندار کو کیسے قبول کرتے ہیں؟ یہ بات آپ کو مجھے یہاں اس کلاس روم میں نہیں سمجھ آئے گی۔ یہ بات جاننی ہے تو آپ کو عملی میدان میں اترنا پڑے گا۔ اگر اس وقت مدینہ کی بستی کے وہ چند لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد نہ کرتے، اور وہی بات جو پیچھے بھی بولی ہے کہ مکہ والوں کی دشمنی پیغام سے تھی، مدینہ والوں کی دشمنی پیغامبر سے تھی، تو آج دنیا کا نقشہ ہی فرق ہوتا۔ لوگ بڑوں کے دین پہ ہوتے ہیں، چند بڑے اگر ویریفائی کر دیں نا کہ یہ اچھا کام ہو رہا لے لیجئے، تو سب چل پڑیں گے پیچھے، لیکن چند بڑے جب ممبروں پہ آ کر کہہ دیں فلاں کی نہ سنیے گا، یہ آپ کے عقیدے بدل دیں گے اور فلاں، تو یاد رکھیے عوام تو کل انام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایسی جہالت سے بچائے۔ 91، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ، تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ اچھا، ان سے یہ تو دریافت کریں، اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ اب ان کے جرموں کی لسٹ لمبی ہے، تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیلیں لے کر آئے لیکن تم نے پھر بھی بچڑا پوچھ لیا، تم ہو ہی ظالم۔ یہ کس بچڑے کی بات ہے؟ بنی اسرائیل کا بچڑا تو وہ سامری کا بنایا ہوا سونے کو پگھلا کر ایک شکل دیا ہوا جانور تھا، آج ہمارے بچڑے حب دنیا ہیں۔ हम सब ने अपना बछड़ा पहचानना, एक जुमला लिखिएगा। अधूरी एतात की वजह, मेरा कोई बछड़ा। जब हम कहते हैं ना दुनिया की मोहब्बत बछड़ा है, तो दुनिया के भी कई रंग हैं। मसलन किसी का बछड़ा होगा सुस्ती, और किसी का बछड़ा होगा नींद, और किसी का बछड़ा माल की मोहब्बत, और क्या कुछ है। आज हम सब भी मुख्तलिफ चीज़ों को पूज रहे हैं। कभी अब्दु दीनार बन जाते हैं, कभी अब्दु दुनिया बनते हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसे बछड़ों को पहचान कर अपनी ज़िंदगी से निकालने की तौफीक दे, और ज़िबाही कर दीजिए इनको जो बार बार आपको अल्लाह के रास्ते से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। हर वो चीज़ अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए जो आपको ज़िंदगी देने वाले से दूर करती है। वलक़द जाकुम मूसा बिल्बैनात, सोचिए ज़रा, मूसा तो ले आए बैजीनात, दलीलें लेकर आए, लगे सुम्मत तहस्तुमुल इजलम इम्बादी। क्या जुम्मत मुस्लिमा के साथ यही मामला नहीं? अल्लाह के नबी तो इतनी प्यारी किताब दे गए, अभी तो पहला पारा चल रहा है, अभी तो आपने एक समंदर पीना है। घूंट घूंट बिहार पारे से सिर्फ एक घूंट ले लीजिए अमल का। कोई एक चीज जो आपका दिल कहे कि ये तो मेरे फायदे की है, ये तो मेरी कमी, बस उसको नोट करके लग कर लें। हमारी थिंग्स टू डू पे मत जाइए, अपनी खुद बनाइए। 30 चीज़ें कम अज़ कम 30 पारों में से ले लें, देखिए आपका किरदार कितना खूबसूरत होता है, और आपका ये रमज़ान पिछले सारे रमज़ानों से मुख्तलिफ होगा इंशाअल्लाह ताला, कई वजूहात की बिना पे। तो अल्लाह ताला आपको मुझे खुद शनासी की तौफीक अता फरमाए। वही सख्स नमी साकुम व रफा नफो ककुम तूर, आयत 93। जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम पर तूर को खड़ा कर दिया और कह दिया कि हमारी दी हुई चीज को मजबूती से थाम लो। इसको भी हाईलाइट कीजिए, इस जुमले को, खुजू मा तैना कुम बिकुवा। क्या पता चला कि हमारी दी हुई चीज क्या थी? अल किताब व सुन्ना। अल्लाह के नबी सल्लम भी दुनिया से जाने के करीब के दिनों में ये हुक्म देकर गए, तरक तुफी कुम अमरैन, मैं तुम्हारे बीच में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। लन तदिल्लुमा तमस्सक तुम बिहिमा, तुम हरगिज गुमराह नहीं होगे जब तक के तुम इन दो को पकड़े रखोगे, और वो किताबुल्लाह ही व सुन्नती रसूली ही, अल्लाह की किताब और उसके नबी की सुन्नत। तो आपको मुझे इस दीन को मजबूत हाथों से थामना है, इस किताब को पूरे जोर से पकड़िए। देखिए मजबूती से पकड़ने को इस वक्त जो आप समझ सकते हैं बस वो ये है, हर हाल में थामना है। फितनों में भी इसी किताब पे अमल करना है, और अमन और सुकून में भी, खुशी में भी, गम में भी। कुछ लोग तो टिश्यू पेपर की तरह पकड़ते हैं इस किताब को। जरा सी फितने की हवा चली, इस किताब पे अमल करने की वजह से जरा सी कोई मुश्किल आई, वहीं छोड़ देते हैं। नहीं, हम ये नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको कुचलियों से पकड़िए, मुखालफतों के बावजूद पकड़िए, खानदान सामने आता है पकड़िए, यही तो होगा अल्लाह को रब बनाना। इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, वो लोग जिन्होंने अल्लाह को रब कहा फिर उस पे जम गए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर फिर फरिश्ते नाजिल किए जाते हैं। तो मजबूती से पकड़िए, आपने नीयत की इस कुरान को सुनने की, मजबूती से बैठ के अब आप वही शौक और वही जौक आखिर तक रखिए, फिर फायदा होगा। अधूरी दवा खाने से पूरा फायदा नहीं होता, खास तौर पर एंटीबायोटिक शुरू कर लीजिए और बीच में छोड़िए और कभी खाइए, वो अंदर का जरासीम भी खुश होगा कि चलो अच्छा बंदा मिला कि कुछ वक्त तो मुझे भी सर उठाने की तौफीक दे देता है। पूरी इताअत के लिए खुजूबा तैना कुंबिकुवा, चूंकि पारे के थीम से, इसलिए इस पेपर गौर व फिक्र कीजिएगा बाद में कि मैंने इस किताब को कैसे लिया हुआ है। छोटी छोटी बात पे उजर बहाने, छोटी छोटी बात पे दीन पीछे जाता है, और वजह भी बता दी, वस्माओ, और सुनो तो सही, सुनना चाहिए, सुनने के साथ बात समझ आती है। कालू समेना व असैना व अश्रिबू फी कुलूबिहिमुल इजल, अल्लाह अकबर। तो क्या फरमाया, दोबारा इस आयत को शुरू से देखिए। जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम पर तूर को खड़ा कर दिया और कह दिया कि हमारी दी हुई चीज को मजबूत थामो और सुनो, तो उन्होंने कहा हमने सुना और नफरमानी की। अल्लाह न करे हम भी यही कह रहे हो इस वक्त दिल से, सुन तो रहे हैं, मानना किसने है। वजह क्या थी ये जुमला बोलने की? और इनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत गोया पिला दी गई हो, यानी रगो रेशे में मोहब्बत थी उनके दिलों में इस हुब्बे दुनिया के बछड़े की। वजह सबब इनके कुफर के, यानी जब नाशुकरी झुकी किताब की तो फिर जगह तो खाली नहीं रहती। याद रखिये जब ये किताब पीछे होगी तो इसकी जगह जरूर कोई और चीज सामने आएगी। इनसे कह दीजिए कि तुम्हारा ईमान तुम्हें बड़ा हुक्म दे रहा है अगर तुम मोमिन हो, यानी ये कोई अच्छे फैसले तो नहीं कर रहा। कुल भी समा या मुरुकुम भी ही ईमान कुमिन कुन तुम मोमिनीन। और याद रखिए कि इंसान जब इस किताब से पीछे होता है ना تو اس کی زندگی بالکل ایک مختلف رنگ کی زندگی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اس کتاب سے دور جانا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ راؤٹر سے دور جائیں تو سگنل لو ہونے لگتے ہیں. لوگ سر پہ بیٹھے ہوتے ہیں راؤٹر کے کہ میرے سگنل سب سے اچھے ہو جائیں. اور یاد رکھیے, اس کتاب سے قربت اللہ سے قربت بن جاتی ہے, گھر والوں سے تعلقات اچھے بننے لگتے ہیں, آپ حقوق العباد کو پورا کرنے والے بہترین کردار میں ڈھلنے لگتے ہیں. اور ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جتنا آپ اس دنیا میں کھوئیں گے آپ کو آخرت بری لگے گی, آپ کو موت بری لگے گی. ساری بے عملیوں کے باوجود ایک دعویٰ تھا اس قوم کا بھی اور آج بھی ہم امت مسلمہ کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ بس دنیا میں جو بھی ہے مرتے ہی جنت, کیونکہ نبی کی امتی, چونکہ وہ سفارش کریں گے, چونکہ یہ ہوگا, اللہ کرے ایسا ہی ہو. اور امید بھی ہے اور رکھنی بھی چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ ایک چیلنج کرتے ہیں آیت 94 اور اس سے اگلی آیتوں میں, قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ, آپ کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے, یعنی تمہاری یہ خوش فہمی ہے نا کہ لن تمسن النار الا ایام معدودہ اور لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا, آگے آئے گی وہ آیت, اگر واقعی تمہارا یہی خیال ہے کہ تم نے تو مرتے ہی جنت میں جانا ہے تو پھر ذرا ایک کام تو کرو. یعنی آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں, تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت کی تمنا کرو, یعنی موت کو طلب کرو, لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے, بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص. اے نبی, آپ انہی کو پائیں گے, یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں. ان میں سے تو ہر شخص ایک ایک ہزار سال کی عمر چاہتا ہے, گو یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا. اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے. مباہلے کا انداز ہے, کیا پتا چلا کہ جتنا آپ دنیا میں دل لگائیں گے, جتنا آپ اس دنیا کو اپنے لیے ناگزیر سمجھیں گے, اتنا آپ کے لیے مرنا مشکل ہوگا. ہم ظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ موت کی تمنا کرنی چاہیے, ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی ایسے فتنے میں ڈال دیا جائے کہ ایمان کا خطرہ ہے تو پھر دعا کر سکتا ہے, اللہ ماہینی ایمان کا نت الحیات خیر اللی, اللہ مجھے تب تک زندہ رکھیے گا جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے, اور اگر دنیا میں زندگی میں میرے کوئی فتنہ آ رہا ہے, کوئی ازمائش آ رہی ہے, تو فتوفنی غیر مفتون, پھر مجھے بغیر فتنوں میں ڈالے فوت کر دیجئے گا. دوسری بات اس آیت میں جو ہے قابل غور, لمبی زندگی کی خواہش. جیو تم ہزاروں سال اور ہر سال کے ہوں دن ہزار, کیا یہ سچ نہیں ہے؟ آج دیکھیے, لمبی عمر کی تمنا تو چھوڑیے, اس کے اسباب پیدا کرنے والے لوگ بھی کس اذیت کی موت مرتے ہیں. وہ ملک دنیا میں جہاں ایوریج ایج 80-200 ہے, آپ دیکھیے چلتی پھرتی لاشیں ہوتی ہیں, اولڈ ہوم کے پاس سے گزریے تو صحیح, آپ ایسے لگتا ہے کہ شاید کوئی قبر سے نہ نکل آیا ہو. کوالٹی لائف چاہیے. ایک ایسا طریقہ بھی ایجاد ہو چکا ہے امریکہ میں کہ جس میں لوگ ایک گروپ کو جوائن کرتے ہیں اور وہ گروپ کے ممبر بن کے کچھ فیس دیتے رہتے ہیں. جب وہ مرنے کے قریب ہو, یعنی فیلنگ ہو رہی ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا, تو فوراً اس گروہ کو اور اس کمپنی کو کال کی جاتی ہے, وہ اپنی ٹیم کو بھیجتے ہیں, آخری ہچکی سے پہلے ہی اس بندے کی باڈی کو فریز کر دیا جاتا ہے. بڑے بڑے چیمبرز ہیں, پچھلے سالوں میں ہم نے دکھایا اور اتھینٹک ہے, آپ خود پڑھ لیں, اس کا نام کلوننگ یا کچھ اس طرح کا نام ہے. لاشوں کو سرد کرنے کا طریقہ, پوری باڈی کو فریز کرنے کا آج سے شاید 10 سال پہلے خرچہ $1.5 لاکھ تھا, 1.5. صرف سر بھی کچھ لوگ فریز کراتے ہیں کہ چلیں, گمان کیا ہے کہ اگلے سالوں میں جب ان بیماریوں کے علاج ایجاد ہوں گے تو یہ ہماری ڈیڈ باڈیز, جو کہ ڈیڈ نہیں فروزن باڈیز ہیں, ان کو میلٹ کریں گے اور ہمارا علاج کریں گے تو ہم زندہ ہوں گے. ایک جملہ تو لکھیے. اس طرح کی زندگی کی خواہش آج تک کسی کی ایک کی بھی پوری نہیں ہوئی. اللہ تو کہتے ہیں میرے رستے میں مر جاؤ تو تم مردہ ہی نہیں ہو. لا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء ولکن لا تشعرون. تو کام زندگی میں وہ کر جائیے کہ زندگی کے آخری وقت پہ موت شہادت کی آ جائے. تو موت تو شہادت کی آئی تو وہ تو زندگی ایسی ہو گئی کہ حیات جاودہ بن گئی. شہید تو مرتے ہی جنت میں بھیج دیا جاتا ہے, قبر کا حساب کتاب ہی نہیں ہے. تو کام کیجئے آپ, میں اس بیکار خواہش میں وقت نہ گزاریں کہ مر گئے تو کیا ہوگا. یا میں چند جملے کرونا وائرس سے خوف زدہ لوگوں کے لیے بولنا چاہتی ہوں. دیکھیے جتنا خوف کرنا تھا کر چکے, اب تو لوگ کچھ تھک بھی چکے ہیں. کیا آپ نے کبھی سنا या फिगर सारे दिन के टीवी के चैनल्स पे जा जाकर देखे कि आज कितने लोग हादसा से मारे गए, कितने लोग कैंसर से मारे गए, कितने लोग जल गए हार्ट अटैक से। नहीं, वो भी लिया करे जब आप कोरोना के वायरसेस के शिकार और फौजशुदगान को देखते हैं। अल्लाह के लिए ऐसी चीजें देखना छोड़ दीजिए। जो थोड़ी बहुत इम्यूनिटी है वो भी खत्म होती है, काम कर लीजिए। चलिए मान लेते हैं आपकी मेरी जिंदगी का ये आखिरी हफ्ता है, कैसे गुजारेंगे? क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कीजिए, करते करते मरेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी ने किसी बुजुर्ग से पूछा कि अगर आपको पता चल जाए कि आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है तो क्या करेंगे? कब? बिल्कुल वैसे ही जीऊंगा जैसे आज जी रहा हूँ, क्योंकि उसमें गुंजाइश ही नहीं थी। जब इताअत पूरी होती है तो मौत से डर नहीं लगता, मौत के लिए तैयारी होती है। लेकिन जुमला अब आपका जिम है, अधूरी इताअत वाले मौत से डरते हैं। अब आप और मैं अपना टेस्ट खुद ले लें कि हम कहाँ खड़े हैं इस सारे मामलात में। आयत 97, कुल मन कान आदू वल्ली जिब्रील। ए नबी, आप कह दीजिए जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो, जिसने आपके दिल पर पैगाम बारी ताला उतारा है, जो पैगाम इनके पास की किताब की तस्दीक करने वाला और मोमिनों को हिदायत और खुशखबरी देने वाला है, तो अल्लाह भी इसका दुश्मन है। जो शख्स अल्लाह का और उसके फरिश्तों और रसूलों का और जिब्राईल और मीकाईल का दुश्मन हो, ऐसे काफिरों का दुश्मन खुद अल्लाह है। क्या पता चला? अल्लाह वालों से दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। एक नसीहत कर देती हूँ, शायद हक तो नहीं है, कभी किसी अल्लाह वाले का मजाक ना उड़ाएं, कभी किसी दीन का काम करने वाले को लट डाउन ना समझिए। आप उनको सुने ना सुने, आप उनसे फायदा उठाएं ना उठाएं, लेकिन उनके बारे में नाजेबा बातें ना कीजिए। छोटा मुंह बड़ी बात होगी। क्यों? क्या आप जिसके खिलाफ बात करते हैं ना, बिलफर्ज वो अल्लाह के यहाँ बहुत आला मुकाम पे हो? तो ये आयत अगर फिट हो गई तो अल्लाह के दोस्तों के साथ बुरा मामला करने वाले अल्लाह उनका दुश्मन बन जाता है। बहुत ही खूबसूरत अहादीस है इस बारे में। तो अल्लाह वालों से, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत कीजिए। और असल में अल्लाह के वली कौन है, ये इंशाल्लाह हम आगे जाके पढ़ेंगे सूरत यूनुस में। ज़रूरत है इस बात की कि हम अपनी इसलाह के लिए इस कुरान को सुने, और अल्लाह ताला मुझे आपको सिर्फ इसी की तौफीक अता फरमाए कि हम अपना किरदार बुलंद करते जाएं, इधर उधर से चीज़ें खुद ब खुद गिरती जाएंगी और हमारे रास्तों से निकलती जाएंगी। और क्या करें, अल्लाह ताला आपको मुझे एक खूबसूरत किताब की तरफ मदऊ करते हैं। आयत 99, वलकद अनज़लना इलैका आयातिम बय्यिनात। और यकीनन हमने आपकी तरफ रोशन दलीलें भेजी हैं जिनका इनकार सिवाय बदकारों के कोई नहीं करता। क्या आपको महसूस हो रहा है कि कुरान आयातिम बय्यिनात है, एनलाइटन द हार्ट्स हैं? क्या हमारी जिंदगियां भी रोशन हो रही हैं इस कुरान के नूर से? तो कुरान की दावत इस नूर को घर घर फैला दें। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें इसका जरिया बना दे। ये लोग जब कभी कोई अहद करते हैं तो इनकी एक ना एक जमात इसे तोड़ डालती है, बल्कि इनमें से अक्सर ईमान से खाली हैं। अल्लाह से वादा करके तोड़ना ये छोटी बात नहीं, जबकि बंदों से वादे करके तोड़ना ही बहुत बड़ी बात हो। जब कभी इनके पास अल्लाह का कोई रसूल इनकी किताब की तस्दीक करने वाला आया, इन अहले किताब के एक फिरके ने अल्लाह की किताब को इस तरह पीठ पीछे डाल दिया गोया के जानते ही न थे। क्या आज हमारी उम्मत का ये हाल नहीं? किताब अल्लाह तो पीठ पीछे है, और जब किताब पीछे डलेगी ना तो याद रखिए फिक्शन आगे आएगा। यहाँ से अब जादू का जिक्र आने वाला है, थोड़े से अलर्ट होके बैठिएगा। तारीख का एक वाक़या, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए हुए एक इल्ज़ाम जो अहले किताब की तरफ से था कि वो नबी नहीं बल्कि बादशाह और जादूगर थे। किंग सुलेमान तो आज भी कहते हैं, और मैजिक को सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ डालते हैं। और अल्लाह ताला ने उनको जो मोजज़ात दिए थे उनको बुनियाद बनाकर कहते थे, देखे ये मोजज़े नहीं, ये जादू है। ये बात नस्ल दर नस्ल से चलती हुई यहूद मदीना तक पहुंच चुकी थी। अब अल्लाह के नबी पर इल्ज़ाम हो, अल्लाह उसको न धोए, ये हो नहीं सकता। तो ये जो आयात हम पढ़ रहे हैं, आप कह सकते हैं कि अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में जो गलत प्रोपेगंडा था, जो उनकी किरदार कुशी की जा रही थी, उसके जवाब में नाजिल हुआ और आपको मुझे इसी के बीच में जादू की हकीकत समझा दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सुलेमान ने तो कुफर ना किया था, बल्कि ये कुफर तो शैतानों का था। वो लोगों को जादू सिखाते थे, और बाबुल में हारूत मारूत दो फरिश्तों पर जादू उतारा गया था। वो दोनों भी किसी शख्स को उस वक्त तक नहीं सिखाते थे जब तक ये ना कह दें कि हम तो एक फितना है। हाईलाइट कीजिए नहनु फितना। और हारूत मारूत का लफ्ज आया है तो हसन बसरी का वो कॉल सुन लीजिए कि दुनिया का जादू तो हारूत मारूत के जादू से भी बड़ा, क्योंकि हारूत मारूत का जादू तो शौहर को बीवी से अलग करता था, दुनिया का जादू बंदे को रब से दूर कर देता है, खालिक को मखलूक से दूर करता है। और फिर क्या होता है, पूरी इताअत की बजाय अधूरी इताअत होने लगती है। तारीख के वाक़यात हैं कैसे अल्लाह ने दो फरिश्ते उतारे लोगों की आजमाइश के लिए, लेकिन वो बातें तो एक साइड पे हैं। हम इसको पढ़ते हुए देखेंगे कि आज हमारे इर्द गिर्द भी जादू की कोई बात है, और जादू में से भी बदतरीन जादू कौन सा, वो जादू जो शौहर को बीवी और बीवी को शौहर से दूर करने के लिए हो। तो फरमाया फिर लोग इनसे वो सीखते हैं जिनसे खावंद और बीवी में जुदाई डाल दें, और दरअसल वो बग़ैर अल्लाह ताला की मर्ज़ी के किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये लोग वो सीखते हैं जो इन्हें नुकसान पहुंचाए और न नफ़ा पहुंचा सके, और वो जानते हैं कि इसके लेने वाले का आखरत में कोई हिस्सा नहीं, और वो बदतरीन चीज़ है जिसके बदले वो अपने आप को फरोख्त कर रहे हैं। काश के ये लोग जानते होते, अगर ये लोग साहिब ईमान यानी मुत्तकी बन जाते तो अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरीन सवाब इन्हें मिलता, अगर ये जानते होते। हर आयत में से ये जुमला नोट कीजिए, अगर ये जानते काश ये जानते। तो ज़रूरत है कि यह हम थोड़ी सी बात जादू की और बाद में फिर फितने की करेंगे। जादू क्या है, हमारे कल्चर में इसके बारे में दो इंतहा हैं। बास लोग कहते हैं है ही नहीं जादू, होता ही नहीं, मैं मानता नहीं, और दूसरे कहते हैं सब कुछ ही जादू है। ज़रा चार दिन कारोबार ना चला, कहते मेरा रिस्क बांध दिया, शादी हुई एक साल गुजर गया, कहते औलाद बांध दी, घर लिया और आग लग गई, कहते हैं जादू जादू। यानी उनका ख्याल है कि मेरे तो शौहर पे भी जादू है, घर आते ही इनका मूड ख़राब हो जाता है, और करने वाली भी माशाल्लाह उनके गुमान के मुताबिक या माँ है या बहन है, यानी सास और नंद को जादू करने वाला समझा जाता है। ये नहीं कहा कि आपका जादू क्यों नहीं चलता, आप जो घर को फैलाए रखती हैं, आपका जो हाल हो लिया और इतना बुरा हाल है, ये है वो जादू करने वाली चीज़ों का तोड़। तो बहरहाल याद रखिए कि जादू हकीकत है, पहली बात है। जैसे अल्फाज का इंसान की तबीयत पे असर आता है, बस आप बैठे हैं और आपको कोई कहे माशाल्लाह वेल डन, आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, आप कितनी अच्छी लग रही हैं, क्या इसके साथ आपके दिल दिमाग पे कोई असर होता है? देखिए मैं अपने हाथ पे ऐसे हाथ मारूँ ना, ये देखिए आपको भी आवाज़ आई होगी। हाथ पे हाथ मारा यानी मादी वजूद पे जब कोई चीज़ लगती है तो दर्द होता है, इसी तरह रूह पे जब कोई चीज़ लगती है तो उससे भी दर्द होता है। जादू रूह का दर्द है। कुछ ऐसे सिफली कलेमात सीख कर जिन्नात और शयातीन को राज़ी करके, और राज़ी करने के लिए अल्लाह का कुफर और इनकार से लेकर कुरान पाक को पाँव के नीचे रोना तक आता है। जादूगर कब्रिस्तानों में जाकर चिल्ले खींचते हैं क्योंकि वो जिन्नात को अपने काबू में करते हैं और उनके ज़रिए से ये सारा काम लेते हैं। हमारे दीन में जादू का कोई हिस्सा नहीं, इंशाल्लाह आगे हम बात करेंगे इस पर भी, लेकिन यहाँ समझ लीजिए ना जादू करना है और ना कराना है। हम में से अल्हम्दुलिल्लाह करने वाले तो कोई भी नहीं होंगे, हाँ ये कहते हैं कि मुझ पे हुआ हुआ मैंने इलाज कराना है, और बाबों के पास जाकर दीन और ईमान बेच आते हैं, और बाज़ दफ़ा तो इज्जतें तक बिक जाती हैं वहाँ। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू का असर हुआ और उम्मत के लिए मिसाल बनानी थी, वरना अल्लाह का नबी तो इन चीज़ों से ऊपर है कि जादू हो सकता है। करें क्या, सबसे पहली बात आप वो सारी बचाव की चीज़ें अपने साथ रखें जिससे जादू होता है, यानी आप अपना अकीदा पुख्ता रखिए, तौहीद पुख्ता हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला आपका बहुत क्लियर हो, पाक साफ रहें, पेट में हलाल लुक में जाएं, और इसी तरह हराम चीज़ों की तरफ नहीं पड़ना, साफ़ सुथरे रहिए, तहारत का ख्याल रखिए, अनवांटेड थिंग्स जो इंसान में प्यूबर्टी के साथ होती हैं उनसे अपने आप को साफ़ सुथरा रखिए, और नज़रों और आँखों कानों की हिफाजत कीजिए, कुरान से मोहब्बत कीजिए, पांच वक्त की नमाज पढ़िए, कोई जादू नहीं होगा आप पे, और ये यकीन रखिए सबसे बढ़कर अपने बारे में कि मुझ पे जादू नहीं हो सकता। आप देखेंगे कि इन चीज़ों से बच जाएंगे। खुदा न खास्ता इन में कमी की वजह से मतलब सुबह शाम की दुआएं नहीं पढ़ते थे, बिस्मिल्लाहिल्लज़ीला यदुर्रुहुमास मिहिशयुन फिलर्दी वला फिस्समाई वहुवस्समीउललीम नहीं पढ़ी सुबह तीन बार, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहित्तामाति मिन शर्रिमा खलक नहीं पढ़ी आपने, हो गया असर किसी किस्म का, उसका इलाज भी कुरान में है। मुअव्वज़तैन, आखिरी दो सूरतें, सूरत फलक और नास। नाजिल उस मौके पे हुई थी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह असर हुआ और अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी को ये आयतें सिखाई जिसमें 11 आयतें हैं, 11 ही गिरें थी आपके ऊपर, एक एक आयत के साथ गिरे खुल गई। बस आपका भी मेरा यही काम है। बाकी इसके ऊपर नंबर एक हमारे पास मैजिक सेमिनार है जो आज से 3-4 साल पहले तकरीबन मेरे गुमान के मुताबिक हमने लंदन से किया था, आप उसकी ऑडियोज कहीं से ले सकते हैं तो वो सुन लीजिए। फिर दूसरी बात जो बहुत ही रिकमेंड करूँगी और ख़ास तौर पे आजकल के इन हालात में, वो है दम ज़रिया इलाज, आप इसको सुनिए। इसमें जादू के मौजू पे बड़ी तवील बात हुई है, दुआएं भी हैं सही रिवायात से। ये जो सेमिनार बताया उसमें मैंने अब्दुल्ला बिन बास की किताब पढ़ाई थी कि जो मोस्ट ऑथेंटिक बुक हो सकती थी मेरे गुमान के मुताबिक, और ये जो दम ज़रिया इलाज है इसमें दुआएं हैं। किसी को भी अपने या अपने बच्चे या अपनी किसी दोस्त के बारे में ज़रा सा भी शक हो तो आप इस बुक से फ़ायदा उठाइए। छोटा सा बुकलेट है, बल्कि बुकलेट का PDF भी आपके साथ शेयर किया जा सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं है। कोरोना वायरस का इलाज इसमें से पढ़ लीजिए, इंशाल्लाह। जादू तो बहुत बड़ी चीज़ है, कोरोना तो नज़र भी नहीं आता आंखों से, तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि मुझे आपको जादू टूने से बचा दे। अब एक चीज़ जो हम इसी हिस्से में पढ़ के आए हैं, नहनु फितना, फितने की बात है। थोड़ी सी बात करना चाहूँगी इस पारे के एतबार से फितने के मौजू पर, हम हर पारे के बीच में किसी भी मुनासिब मुकाम पर फितने की बात करेंगे। और वो क्या है कि फितना असल में आजमाइश है, क्योंकि मुझे अपनी सोच से लगता है कि शायद अभी तक कुछ लोग ये ना समझ सके हों कि दौरे हाजिर के फितनों में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप देखिए कि मुख्तलिफ फितने तो हैं ना, माल और औलाद के, औरत नफसानी ख्वाहिशात है, गुमराह कुन फितने हैं, इल्मी अमली। मतलब आज इस बारे का जो फितना हम पढ़ रहे हैं, अगर इस लिस्ट में से आप ढूंढें तो ये कौन सा फितना है? माल औलाद का नहीं, औरत नफसानी ख्वाहिशात का नहीं, गुमराह कुन नजरियात का किसी हद तक, इल्मी और अमली और तमदनी फितनों में से कोई फितना है? हाँ जी, हो सकता है। दीन दुनिया का फितना, हाँ। अखलाकी माशरती, यानी ये जो अधूरी इताअत का फितना है ना, ये इल्मी नहीं अमली फितना है। तो चंद बातें फितने के नाते से आपको मुझे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिए कि जितना ज़्यादा इल्म होता है ना, इंसान उतना ही गलत चीज़ों में पड़ने से बच जाता है। आपको मुझे अल्लाह ने ईमान दिया, और ईमान की आजमाइश ये सबसे बड़ा फितना है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हो को जो पत्थरों पर लिटाया जाता था ना, ये उनके ईमान की आजमाइश थी। करते क्या हैं, इनका रवैया क्या होता है, ज़रा देखते हैं कि ये पत्थर जो इनके सीने पे रखे जाते हैं और पिघलते हुए इनके जिस्म की चर्बी गिर गिर पड़ती है, भला ये ईमान का दावा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये सच्चा है भी कि नहीं? बात समझ रहे होंगे। बिलाल का पत्थरों पे लिटाया जाना, हुबैब का तकलीफ़ों में डाले जाना, ये सब उनके ईमान की आजमाइश थी। क्यों? इसलिए कि फितना दर हकीकत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, मगर उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, इसके मुख्तलिफ मानी है, और उर्दू में भी इसको मुख्तलिफ मौक़ों पर फितना कहते हैं। क्या कहते हैं? खूबसूरत औरत फितना है, और घरों की लड़ाई झगड़े भी फितने हैं। तो अमूमी तौर पर फितने का मानी क्या है? जाँचना, परखना, आजमाइश करना। धात को आग में डाला जाए ताकि उसका खोट मालूम हो जाए, इस कैफियत को डिक्शनरी के मुताबिक फितना कहते हैं। अब आप एक तोले की चूड़ी लेकर गए कि बेच देती हूँ, सुनार ऐसे नहीं लेगा, वो कहेगा मैं इसको रखता हूँ, फिर मैं इसको ढालूंगा, फिर देखते हैं अंदर से क्या निकलता है। जब वो उसको पिघलाएगा तो वो एक तोले में से पौना तोला तो सोना निकलेगा, कैरेट दिखेंगे उसके, बाकी चीज़ें मट्टी में गई। तो फितने का लफ्ज़ भी यही है। अल्लाह ताला आपकी मेरी ज़िंदगी में मुख्तलिफ किस्म के फितने लाते हैं। क्यों लाते हैं? ताकि हमारे ईमान का दावा कि मैं अल्लाह को सबसे ऊपर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना राहबर और रहनुमा जानती हूँ, ये खुल जाए। पोल खुलते हैं, असल में मैं तो यही कहूँगी, ये कोरोना आज फितना क्या, ये पोल खुल रहे हैं मेरे आपके ईमान के? ये लॉकडाउन एक फितना क्यों है कि ये हमारे असल खुल रहे हैं? और ये अधूरी इताअत फितना कैसे है कि इस पहले पारे ने आपके मेरे ईमान के पोल खोल दिए? ये भी कमी, ये भी कमी, फिर भी मुसलमान। तो हर दौर के फितने फ़र्क होते हैं, याद रखिएगा। जब भी कोई मुश्किल परेशानी आती है, लोग कहते हैं फितने का दौर है, फितना फितना। तो इसका जो मानी क्या हुआ, फिर जांचना, परखना, आजमाइश में डालना। सूरत अल अम्बिया में अल्लाह सुबहान तआला 35 में फरमाते हैं, व नब्लूकुम बिश्शर्री वल खैरी फितना, हम तुम्हें खैर और शर से आजमाएंगे। यानी अल्लाह की सुन्नत है कि वो बंदे को आजमाता है। क्या पता चला कि अल्लाह ताला आपको मुझे आजमाता है। और जब भट्टी में डलते हैं आजमाइशों की, तो हमारी असल निकल आती है। आमलात में हम बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, मुझे तुमसे कितना प्यार है। इमेजिनेशन में लाइए अपनी बेस्ट फ्रेंड को, जिसको आप एक अरसा तक बहुत मुखलिस समझते रहे, लेकिन उसके दिल में खोट था। वो तो आपसे अच्छी सी चाय पीने के लिए आती थी, वो तो आपके कपड़े जेवर शेयर करने के लिए आपके पास आती थी। अब आप पे आ गई आजमाइश, अल्लाह ने एक एक करके कुछ चीज़ें आपसे ले ली। अब आप वो सब नहीं कर सकी उनके लिए। देखिए, हफ्तों नहीं दिखेगी, फिर महीनों नहीं दिखेगी, फिर उसका नाम भी लिस्टों से निकल जाएगा। इसी तरह से लोग फितनों में डलने के बाद ही सामने आते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में, हर ऑर्गेनाइजेशन की ज़िंदगी में, हर बड़ा काम करने वालों की ज़िंदगी में आजमाइशें आती। कभी इल्ज़ाम लग जाते हैं, कभी स्कैंडल बन जाते हैं, कभी लोग कुछ गलत चीज़ें मारूफ करते हैं, तो ये खरे और खोटे का फ़र्क मालूम करने के लिए होते हैं। इंतहाई गर्म आग पर पिघला कर असल हकीकत मालूम की जाती है। इसी तरह फितनों की आग में डालकर मोमिन और मुनाफिक का फ़र्क मालूम होता है कि सब्र करने वाले और बेसब्री करने वाले कौन से हैं। शुक्र करने वाले और नाशुक्री करने वालों के बीच में हद फासल है फितना, और अल्लाह की रजा पर राजी रहने वाले और शिकवे शिकायतें करने वालों के दरमियान फर्क मालूम होता है। और इसी फितने के जरिए अल्लाह ताला फिर मुख्तलिफ तरीकों से अपने बंदों की आजमाइश करते हैं। इस कोरोना के फितने ने भी गैब के पर्दों में हमारे आमाल नामों में कितना फर्क डाला होगा। फरिश्ते भी हैरान हो रहे होंगे कि अल्लाह वाकई असल में ये था। अच्छा, हम तो कुछ और ही समझ रहे थे। और याद रखिए कि इसमें कई लोग जिन पे इल्ज़ाम लगे, लोग कहते हैं ये बुरे लोग हैं, ये खराब काम करते हैं, वो भी अपनी असल पे आएंगे। नहीं, ये तो बुरे माहौल का असर था। हमने तौबा कर ली जिस्म फरोशी से, हमने तौबा कर ली फिस्क और फजूर से, और अल्लाह ताला उनको ईमान और हिदायत भी देता है। कभी जवान बच्चे का इंतकाल हो जाता है, लेकिन माँ अल्लाह से करीब आ जाती है। कभी लगी लगाई खेती बर्बाद हुई, फैक्ट्री में आग लग गई, कारोबार डूब गया, लेकिन हमारे वो भाई अल्लाह के करीब आ जाते हैं। तो मांगिए तो नहीं, ये समझ लीजिए कि अल्लाह तू अगर आजमाइशों की भट्टी में डाल के हमें आजमाना चाहता है, तो हमें पहले ही खड़ा कर दे, हमें नहीं खोट मालूम कराना। आप देखिए ना, 24 कैरेट का बिस्किट आप अगर लेकर जाते हैं सुनार के पास, तो वो नहीं पिघलाता, क्योंकि स्टैम्प्ड है, मोहर है, इसमें खोट नहीं है। ए अल्लाह, मुझे आपको 24 कैरेट गोल्ड बना दे, स्टैम्प कर दे इस पे, इब्राहिम पे अल्लाह की स्टैम्प है। वजिद तला इब्राहिम और अब्बू बी कलीमातिन फातम्मा हुन्ना, अल्लाह हम पे भी स्टैम्प लगा दे कि इब्राहिम की तरह हम भी हर मौके पे सामने आकर अमल करने वाले तैयार हैं। वरना याद रखिए, एक चीज ज़हन में रखिए, लफ्ज़ फितने के साथ हमेशा बुरा तसव्वुर मत लाइए। क्यों? अल्लाह ताला कहते हैं, कभी दौलत देकर आजमाते हैं और कभी फकीर बनाकर आजमाते हैं, कभी सेहत देकर आजमाते हैं, कभी बीमार बनाकर। सूरत मुल्क की पहली आयत में आप रात को पढ़ के सोते हैं, लिना ब्लुवा को मैं यू हम अहसन हुआ मला। कभी कहते मिन खैरी व शर्री ही फितना, कभी अल्लाह मा तहत बनाकर हमें आजमाते हैं, हम किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं, और कभी हाकिम बनाकर आजमाते हैं, यानी हम लीडर बना दिए जाते हैं, हम जिम्मेदार बना दिए जाते हैं। तो आपका जिम्मेदार बनना भी फितना है। आप अगर जिम्मेदारान के गिरोह में आ गए, तो आपको मजीद जिम्मेदार बनना है, और अगर आप मातहत है, तो आपको बेहतरीन ओबीडियंट बन के रूल्स को फॉलो करना है। आपको कहा जाता है ये चीज शेयर नहीं होगी, तो नहीं शेयर करनी। फिर इस तरह कभी अल्लाह ताला औलाद देकर आजमाते हैं और कभी औलाद लेकर आजमाते हैं, कि ये किसी बाबे की कब्र पे तो नहीं पहुंच जाता कि बाबा जी तुसी ही दे दो, अल्लाह तो दे नहीं रहा, ये नहीं करना। और इसी तरह कभी देता है, तो हम उसको तो नहीं आजमाइश कहते, हालांकि वहां आजमाइश क्या है कि इस बच्चे की तरबियत कैसी करते हैं। और कभी अच्छे बुरे हालात में डालकर, साजगार और नासाजगार हालात में डालकर। और याद रखिएगा, ये सब आजमाइशें हमेशा रही हैं और रोज़े क़यामत तक आती रहेंगी। आजमाइशों का ये सिलसिला एक अदना इंसान से लेकर एक बढ़िया आला इंसान, यहाँ तक के कायनात की अफजल तरीन शख्सियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी आया। जादू आप पर भी हुआ, आपकी बीवियों के और आपके बीच में गलत फहमियाँ भी हुई, और इसी तरह बाकी अम्बिया कराम पर भी हुई। अल्लाह ताला से ये दुआ कीजिए कि आप में آزمائشوں سے بچیں، اور اگر کوئی ہو جائے آزمائش ہماری آپ کی تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ پورا اتارے. اور اللہ سے یہ دعا کیجئے اس سفر پہ جو ہم نکلے ہیں، دور حاضر کے فتنے تو وہ فتنے ایک ایک کر کے ہمارے سامنے آ جائیں جس کو ہم فتنہ سمجھتے نہیں. اور یہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، وہ فتنے اس پورے سفر میں آپ کے سامنے آئیں گے جو آپ نے سوچے بھی نہیں ہوں گے. ہم فتنوں کے موضوع پہ کیا کہتے ہیں؟ دجال. اور ہم کہتے ہیں فتنہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج آ جائیں گے. وہ تو قرب قیامت کے فتنے ہیں. اس کو سن کے کیا کیا آپ نے؟ اس سے کیا لیا آپ نے؟ صرف انفارمیشنز. آج کے دور کے فتنے نہیں سمجھیں گے تو پھر اس پہ سے اپنے آپ کو نکالیں گے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ یہ فتنوں کے بارے میں جو چند باتیں سنی پڑھی اس کو مجھے غور کر کے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنے والا بنا کہ ہم فتنوں سے بچیں. اب آگے چلتے ہیں آیت نمبر 104 میں. یہاں سے ادب آداب سکھائے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ آپ کے اور میرے لیے اس وقت جبکہ ہم اپنے گھروں سے سن رہے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ علم کی محفل کے آداب. استاد اور شاگرد، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک نبی اور رسول ہی نہیں مانتے تھے بلکہ آپ ان کو اپنا استاد بھی مانتے تھے. تو اسی محفل کی کچھ جھلکیاں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہو، یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلے دل کے مالک تھے، وسعت قلبی تھی. آپ کی محفلوں میں مسلمان بھی آتے اور غیر مسلم بھی آتے، اور آپ کو بتانے والے تو نہیں تھے لیکن دل کے کھوٹے لوگ بھی آتے تھے نفاق سے بھرے ہوئے، حتیٰ کہ یہود تک آتے تھے جو کسی دوسرے مذہب کے پیروکار تھے. اور علم کی محفلیں ایسی ہی ہونی چاہیے، سب کے لیے کھول دو. عام یہ بند کمروں میں لاکڈ روم میں کرنے والا کام ہے ہی نہیں ہے. اور یہاں سے آگے اب آپ چند آیتوں میں اس دور کے یہود کے پھیلائے ہوئے کچھ فتنوں کا ذکر سمجھیں گے. آپ لکھ لیجئے کہ اب آگے ہر آیت میں ایک ایک فتنہ ہے. اور وہ کیا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کی طرف جب لوگوں کو جوک در جوک آتا دیکھتے نا تو کوئی نیگیٹو جملہ بس بول دیتے، جس سے وہ مہذب بھی لگتے کہ نہیں یہ تو ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے، لیکن حساس ذہنوں کے اندر ایک بدگمانی کا بیج بھی آتا. تو ہوتا کیا کہ اللہ کے نبی کی محفلوں میں آ کر بیٹھتے، بظاہر تو آپ دیکھیں نا علم کی محفل میں آنے والا کتنا نیک کام کر رہا ہے، تو اگر نیت خراب ہو تو یہ بھی آزمائش ہے. لکھیے ایک فتنہ، علم کی محفل میں علم لینے یا دینے یا اس کا کنٹرول سنبھالنے، جس کو ہم ایڈمنز کہہ لیں، اس کے علاوہ کسی ایسی محفل میں آنا بھی ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے. کھوٹا بندہ ہے وہ کہ اس کے علاوہ کسی اور نیت کے لیے آئے کہ کچھ کرے. تو وہ آتے کیا تھے؟ دیکھنے کے لیے، سی آئی ڈی کرنے کے لیے، انویسٹیگیشن، اپ ٹو ڈیٹ، ذرا دیکھیں یہ کرتے کیا ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، اچھا پھر ہم اس کو بھی دیکھیں، ہم بھی ایسے کریں گے. اور اللہ کے نبی نے کبھی نہیں منع کیا. اب کرتے کیا کہ آتے، اب محفل میں تو ایک تقدس ہے، ایسے دل سے جو نکلتی ہے دل پہ جاتی ہے والی کیفیت ہے. اور واقعی علم کی محفل کو جو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے اور آسمانوں تک پہنچتے ہیں وہ کیفیت دکھتی تو ذرا زچ بچ ہوتے ہیں. ان کی محفل میں بڑا دل لگ رہا ہے، ہمارے پاس تو لوگ تھوڑی دیر کے بعد بور ہونے لگتے ہیں. اب کیا ہوتا؟ وہ کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتے، اور شوشہ اگر انگلش سپیکنگ لوگوں کے لیے نیا لفظ ہے، کوئی ایسا اسکینڈل بناتے کہ محفل کا رنگ ختم ہو. صحابہ کرام کی عادت کیا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے ہوئے اگر کوئی بات نہ سمجھ آتی تو کیا کہتے؟ راعینا. راعینا اردو میں ایسے جیسے ہماری رعایت کیجئے، آپ میرے اوپر لے لیجئے، میں تیز تیز بول رہی ہوں، آپ لکھ ہی نہیں پا رہے، تو آپ کہیں گے پلیز ہماری رعایت کیجئے، آہستہ آہستہ بولیے، ہم آپ کے ساتھ نہیں چل رہے، آپ تو بہت تیز تیز جا رہی ہیں. یہ تو آج نہیں آپ کو فیل ہو رہا، آگے فیل ہوگا، پتہ نہیں کس آیت پہ پہنچ گئی، ہم تو ابھی ڈھونڈ رہے تھے. تو وہ فلکچویشن آف مائنڈ کنٹرول کیجئے گا، آپ دورہ قرآن کو انجوائے کریں گے. اب ہوا کیا کہ جب آپ نے یہ کہا، صحابہ کہتے رائیں نا، تو اللہ کے نبی تو پہلے ہی بہت خوبصورتی سے بات کرتے تھے، ٹھہر ٹھہر کے بولتے تھے، پھر اس کے بعد آپ کی عادت تھی کہ اکثر اہم باتوں کو تین تین بار دہراتے تھے. تو صاحب میں سے کوئی کمزور ہوں گے میرے جیسے، کوئی اتنی سمجھ نہیں تھی، کچھ آپ جیسے بڑے ماشاءاللہ فاسٹ مائنڈڈ تھے جو کہتے ہیں ہم تو ملٹی ٹاسکنگ ہے، دیکھو سن بھی رہے ہیں اور اپنے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں، پیاز بھی کٹ رہے ہیں اور ساتھ ہم نوٹس بھی بنا رہے ہیں اور ہم یہ بھی کر رہے ہیں. تو بہرحال وہ کہتے تھے راعینا، دشمنی دل میں رکھنے والے، بغض، راہ جاتے کا بغض، ارے نعت، راہ جاتے کا حسد اور شر رکھنے والے، क्या कहते, राई ना ओ हमारे चरवाहे, यानी आवाज बदल कर लईयम भी अलसीनातिहिम, आगे भी आएगा जुबान ने मोड़ मोड़ के बात करते हैं, अल्लाह के नबी को नहीं पता चलता जो सच्चे दिल का होता है। लिख लीजिए, जो दीनदार साफ दिल का होता है वो सबसे प्यार करता है, वो सबसे राब्ते में रहता है, वो सब को इनवाइट कर लेता है, फिर के आइए आप भी आ जाइए, आप भी आ जाए, कोई जंगी राज थोड़ी इधर शेयर हो रहे हैं, क्योंकि मुखबरी होगी। तो अल्लाह के नबी बदगुमान नहीं होते थे, अल्लाह ने आयत उतार दी। कहना क्या चाहिए था कि अल्लाह के नबी एक ऐलान कीजिए कि खबरदार, ये जो लोग आपको राई कह रहे हैं वो ना कहें, यानी जिसने गलती की उसको टोकते। लेकिन मजे की बात, आप इंजॉय करेंगे इसलिए बोलने लगी हूँ, गलती करने वालों को नहीं टोका, आप जैसे प्यार और मोहब्बत और यकीन से सुनने वालों को कह दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तकूलू रायना, तुम ये लफ्ज़ राय ना ही छोड़ दो। ये है हमारे दीन का खूबसूरत नुक्ता। आज दीन देने और लेने वालों को इस पे गौर करना चाहिए कि जब कोई चीज, तुम्हारा कोई लफ्ज, तुम्हारी कोई टोन दूसरों को पुट ऑफ कर दे, तो उनको बुरा ना कहो, अपनी आवाजों को और ना ऊंचा करो और गरजने वाला अंदाज ना करो, और बाजू पे कमीज चढ़ा के कोई इधर आओ मैं बात करता हूँ, नहीं, चैलेंजिंग स्टाइल नहीं है, लफ्ज बदल दो। देखिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं अवॉइड ग्रेसफुली। मिसाल दे देती हूँ, शायद फायदा हो किसी को। गाड़ी चलाने वाला काफी देर से सीधा एक लेन में चल रहा था, देखता है कि दूर सड़क पर एक पत्थर रखा हुआ है, क्या करेगा, फौरन से पहले लेन चेंज कर लेगा, और बहुत ही अच्छा होगा तो थोड़ी दूर जाके जरा सी गाड़ी रोक कर आएगा और उस पत्थर को हटा देगा, ताकि तेजी में आता हुआ कोई पीछे से इससे ना टकराए। बस ये कीजिए, अपनी लेन थोड़ी सी हटा लीजिए, देखिए सर पटकने से कुछ नहीं होगा, कोई नहीं मानेगा आपकी बात को, जो जिस चीज पे लगा लगा रहे, लेकिन आप वो लफ्ज बदल दीजिए, फितना और शर फैलाने वाली चीज को हटाएं, कहीं गंदगी पड़ी उसको उठा दीजिए, और उसका अल्टरनेट दे दिया वन जुरना, और साहबा ने इस पे अमल शुरू कर दिया। हुआ क्या, वो सारे प्लान तो लफ्ज राई पे कर चुके थे ना, राईना से राईना और ओ चरवाहे और गडरिए, और नोट कीजिएगा एक जुमला, बहुत बड़ी बात है, तौहीने रिसालत हो रही है इधर, तौहीने रिसालत का जवाब टायर जलाना, आग फैलाना, और अपनी ही एम्बेसीज को जाके जलाना नहीं है, अपनी ही मुल्कों की बसों के शीशे नहीं कि अल्लाह के नबी के खिलाफ कार्टून बने, और ये वो क्या करो, तुम रास्ता बदल लो। हमारा दीन फ्रिक्शन वाला दीन नहीं है, हमारा दीन टकराव नहीं सिखाता, हमारे नबी बहुत पीसफुल दीन को दे करके, तो लिहाजा आपके मेरे लिए भी यही, उलझो नहीं, झगड़ो नहीं, अपना रास्ता अब दूसरी तरफ कर लो, और वस माऊ पहले ही गौर से सुना करो। साबा को जरा और ही डांट दिया कि तुम ये लफ्ज राय ना बोला ही ना करो, गौर से सुनोगे तो तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बीच में डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हो कि बार बार पीछे करके सुनना पड़ता है, और बीच में कई चीजें तुम्हारी कटती हैं, बल्कि क्या करो, अपने आप को सुधारो। ये है कुरान का मिजाज, करेक्टर बिल्डिंग वाला। अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक अता फरमा दें और हम इससे बचाएं। अगला शोशा जो उस दौर के लोगों ने फैलाया था वो क्या था कि वो ये सोचते थे कि कुरान तौरात के बिल्कुल मिसल हो, जब कभी कोई नई चीज सामने आती, कोई बात हो जाती, तो उस वक्त फिर वो मुख्तलिफ किस्म की बातें पेश कर देते थे। तो उसका जवाब अल्लाह सुबहाना ताला ने क्या दिया, थोड़ा सा इस पे गौर कीजिएगा कि किस तरीके से अल्लाह सुबहाना ताला इन चीजों को सामने लाते हैं। जब ईमान वालों को कह दिया कि आप बात ही ना ऐसी करें कि जिसके बाद बात दोहरानी पड़े, तब एक और शोशा सामने आया। देखिए ना, दुश्मन जो होता है ना, वो ताड़ में होता है, आप एक काम करेंगे वो दूसरे तरीके से आ जाएगा, इधर से रोकेंगे तो उधर से रुक जाएगा। तो अल्लाह ताला ने उसका जवाब फिर आपको मुझे आयत नंबर 105 में दिया, मा यवद्दुल्लज़ीन कफरू मिन अहलिल किताबी वलल मुशरिकीन अन युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिम मिन रब्बिकुम, ना तो अहले किताब के काफिर और ना मुशरिकीन चाहते हैं कि तुम पर तुम्हारे रब की कोई भलाई नाजिल हो, यानी अंदर हसद हो, तो कैसे बंदा ये सोचे कि दूसरे को भी वो मुकाम मिल जाए जो मुझे मिला, ये मुराद है। इनकी इस हसद से क्या हुआ, अल्लाह ताला जिसे चाहे अपनी रहमत खसूसियत से अता फरमाए, अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। क्या पता चला कि इनके हसद से आपका नुकसान नहीं होगा, ये जल जल के खुद ही काले हो जाएंगे। तो हासिद किसी का नुकसान नहीं करता अपने सिवा। तो आइए जरा अगला शोशा पढ़िए, मा नंसख मिन आयतिन नुनसिहा नाती बिखैरिन मिन्हा मिस्लिहा, نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو۔ یہ تو ہو گیا، آگے جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ یہ تھا ان محفلوں میں آ کر پھیلایا ہوا شوشہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنت کا علم دیتے تھے اور وہاں اللہ کی مرضی تھی، اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ چیزوں کو تدریج کے ساتھ کرتے ہیں۔ کچھ احکامات بدلے، مثلا شروع میں آپ دیکھیے کہ عدت ایک خاتون کی بیوگی کی صورت میں ایک سال کی تھی، بعد میں آج کے دور تک 4 مہینے 10 دن اور قیامت تک یہی عدت رہے گی۔ اب پہلا حکم سخت تھا، اگلا آسان ہو گیا، اللہ نے کر دیا اس کی مرضی۔ تدریج، گریجولی یوز ٹو کریں۔ روزے پہلے کسی اور کیفیت میں تھے، بعد میں ہو گئے۔ شراب 3 سٹیپس میں حرام کی گئی۔ ان باتوں کو اس علمی محفلوں سے اٹھ کر باہر پھیلاتے دیکھے، پتہ ہی نہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ۔ تو اگر کرنا ہی تھا تو ایک ہی دفعہ کرتے، کبھی کوئی رول کبھی کچھ، یعنی بس ایک جملہ لکھ لیجئے، نیگیٹو ٹاک۔ ایسی نیگیٹو باتیں کر کے علم کی محفلوں کی باتیں باہر لاتے تھے کہ برائیاں باہر جائیں اور اچھائیاں اپنے بھی اندر نہ آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ آپ بالکل نہ گھبرائیے، یہ ایسی چیزیں کرنے والے کہنے والے کیا یہ نہیں جانتے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض، کیا تجھے علم نہیں کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہی ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں۔ کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ سے پوچھا گیا تھا؟ تو سنو، ایمان کو کفر کے ساتھ بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ یہ آیت 108 میں تیسرا شوشہ ہے، تیسرا پروپیگنڈا۔ آپ کی محفلوں میں آتے اور بے جا سوال پوچھتے، بے تکے، جیسے آج بھی کچھ لوگ، یقین کیجئے، لیکچر سننے نہیں آتے۔ مجھے نہیں پتا کسی کی کیا نیت ہے، کون سموسے چاٹ کھانے آیا ہے، کون کسی دوست کی محبت میں آیا ہے، لیکن کچھ پرسنٹ لوگ صرف سوال پوچھنے آتے ہیں۔ اور سوال کیا آتا ہے؟ نیل پالش لگا کر نماز ہو جاتی ہے، اور عورت اور مرد کی نماز میں فرق کیا ہے، اور کیا نماز میں ہاتھ اوپر کرنے چاہیے، یہ رفع الیدین کیا، اور قضا عمری کیا۔ یقین کرے پیٹی کوشچنس پوچھتے ہیں تاکہ فتنہ اٹھے، بعد میں کہ یہ تو وہابی ہیں، اور یہ تو فلاں ہیں، یہ تو سنی ہیں، یہ تو شیعہ ہیں۔ یعنی فرقوں میں کھو کر لوگوں کو سچے پیغام کی جو خوبصورتی ہے اس سے ہٹانا۔ اور یہاں ایک چھوٹی سی بات کہوں، دورہ قرآن کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا، کوئی مسلک نہیں۔ دیکھیے فرقے مسلک بنتے ہیں فقہ کے بعد، قرآن کا ٹاپک فقہ نہیں ہے، فقہ ٹاپک ہے حدیث کا، اسی لیے تفہیم السنہ حدیث ہم بک کی سیریز پڑھتے ہیں۔ قرآن کا ٹاپک تعلق باللہ ہے، مقصد حیات ہے، عقیدہ ہے، اللہ کو ایک مانو۔ تو لہٰذا ایسی چیزوں میں ہم پورے دورے قرآن میں اینڈ تک نہیں جاتے کہ جو کسی مسلک، کسی فرقے کے، کسی عقیدے، کسی تھاٹ سے ٹکرائے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم تو اپنی ہدایت کے ابھی متلاشی ہیں کہ اللہ ہمیں مقصد حیات بھی دے اور ہمیں ادھوری اطاعت سے نکال کر مکمل اور پوری اطاعت کرنے والا بنا دے۔ تو یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت 109 میں فرما رہے ہیں، ود کثیر من اہل الکتاب، ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد اور بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں، تم بھی معاف کر دو۔ یہ ہے جملہ، کل وت کائنڈنس، اگنور گریسفلی، اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم نمازیں قائم کرو، دیکھیں مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے، یہ ہر سازش کو تم بھی کیوں غیروں سے جوڑتے ہو؟ یہ غیر مسلموں کی سازش، یہ ادھر سے آئی۔ آج بھی مسلمانوں میں یہی فتنہ ہے، ہر فتنہ، ایون کرونا فتنے کو بھی کئی لوگ کسی ملک سے جوڑتے، کبھی کسی سے۔ کیا آپ غیب کے پردوں میں سے جھانکیں گے؟ اور اب جا کر آپ ایسی چیزیں سن سن کے دماغ کو گھمائیں گے؟ اللہ کے بندو، نمازیں قائم رکھو، یہ ہے کہ تم اپنا دین پختہ کرو۔ تم مسلمان ادھوری اطاعت سے نکل کر پوری اطاعت میں آ جاؤ، دنیا کا کوئی فتنہ اور کوئی فتنہ پھیلانے والا تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ تو کرو کیا؟ تم نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اس کو نوٹ کیجئے۔ آپ کا میرا اس وقت سننا اور سنانا، اور ہمارے بہت سارے ساتھیوں کو اس کو آپ تک پہنچانا، یہ سب کچھ کس امید پہ ہونا چاہیے؟ ما تقدم لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ۔ आज दुनिया में इस सोच के साथ नेकियां और इताअत कीजिए कि कल आखिरत के बेल्ट पे पड़े मिलेंगे। मिसाल लीजिएगा, एक छोटी सी, सफर करने वाला अपना लगेज उठा के तो नहीं फिरता ना, जो ही बोर्डिंग पास लेने खड़े हुए अपने लगेज दे दीजिए और वो टैग्स लगाकर अंदर भेज देंगे, शर्त ये कि वजन पूरा हो। किस उम्मीद पे देते हैं आप कि जो ही अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा और जाकर लगेज उठा लूंगा, किसी को शक भी हो जाए ना कि मेरा लगेज लॉस्ट हो जाएगा या टूट जाएगा या वहां मिलेगा ही नहीं, कभी ना दे, सर पे उठा के ले जाए, जहाज में अपना बक्सा उठा लें, लेकिन वो नहीं देंगे। इसी मिसाल को सामने रखिए, आज इस वक्त भी आप और मैं जो कुछ कर रहे हैं इस उम्मीद पे कीजिए कि दुनिया में भी इसकी खैर मिलेगी, क्योंकि हल जजाउल एहसान इल्लल एहसान, खैर का बदला एहसान का बदला, नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ भी नहीं है। तो आपको छोटी जिम्मेदारी मिली कि बड़ी मिली, बस सर सजदे में रख दीजिए बस। और दूसरी बात है कि दुनिया के शर फितनों से भी अल्लाह बचाएगा और आखरत की बेल्ट में तो ये इंशाल्लाह नेकी बड़ी होगी। बड़े ही खुशकिस्मत हैं वो लोग जो आज अपनी ज़िंदगी की ये कीमत दें कि नेकी और भलाई के काम जो मिल गए अब उसको नहीं छोड़ना, और ऐसे करिए कि फिर हमेशा वो काम आपको मिले, ताकि आपकी जगह कोई दूसरा ना आए। मेरी जगह कोई 10 लोग आने को तैयार होंगे, आज मैं ये काम छोड़ूं, देखिए क्या होता है। फितरत का असूल है, साइंस का असूल है, जगह खाली नहीं रहती। आप ना बनिए स्टूडेंट, ना पढ़िए, देखिएगा जब रूम भर जाएगा आपको कहा जाएगा आप निकल जाए। जो सुन नहीं रहे वो शौक से निकल जाए, जो ये बात में सुनेंगे वो निकल जाए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला के पास बहुत मखलूक है, हत्ता कि अल्लाह ताला इस दुनिया में भी वो लोग जो अकड़ेंगे अल्लाह उनको निकालेगा। आगे सूरत मायदा में एक धमकी है, इंशाल्लाह जब वहां पहुंचेंगे छठे पारे में तो खुद ही सुन लेंगे कि ए मुसलमानों, तुम अधूरी इताअत से पूरी जन्नत लेने वाले हो, तुम्हें तो दुनिया के भी खिलाफत ना मिली, तुम तो दुनिया के पसंदीदा नहीं रहे, तो क्या तुम इस वक्त अल्लाह के बड़े पसंदीदा हो गए? आंखें खोलो, खुशफहमियों के जंगल से निकलो कि जो हम हैं वो कोई है नहीं, जो हम कर सकते हैं वो कोई कर नहीं सकते। और याद रखिए, जब अधूरी इताअत के साथ जन्नत की उम्मीद है ना, तो क्या धमकियां इंसान देता है? सुनिए आयत नंबर 111, वकालु लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन काना हूदन अव नसारा। ये कहते हैं कि जन्नत में यहूदो नसारा के सिवा और कोई ना जाएगा। इनके इस जुमले पे अल्लाह ताला का क्या फैसला है? ये सिर्फ इनकी आरजुएं हैं। इनसे कहो कि अगर तुम सच्चे हो तो कोई दलील पेश करो। ये दावा कल के यहूद और नसारा ने भी किया था, कहते थे हम अल्लाह के लाडले और प्यारे हैं, बस नाम रख लो अपना तो फिर तुम जन्नती। क्या आज हम मुसलमानों ने तो नहीं ये कह दिया? मैं अपने ऊपर लेके कहूंगी, और मुझे उम्मीद है कि हमारे ही कल्चर में पलने वाले बहुत सारे बच्चे 10-12 साल की उम्र तक भी कम अज कम या कुरान को शऊर से पढ़ने से पहले तक यही समझते हैं कि जन्नत में सिर्फ मुसलमान जाएंगे या हम मुसलमान जरूर ही जन्नत में जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, दूसरा कैसे जाए? और आज मुसलमानों ने तो इस पे और भी जुल्म किया। पारे का जो एंड शुरू हो रहा है इसमें फिरका वारियत और गिरोह बंदी पे बात होगी कि लफ्ज यहूद और नसारा जो इस आयत में आए हैं ये अल्लाह ने नहीं दिए थे, इन्होंने खुद रखे। ये सेक्टेरियन नेम्स हैं। हर दौर के नबी के फॉलोअर्स को जो नाम दिया गया वो मुस्लिम था। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, आज भी आप सूरत हज की आखिरी आयतों में पढ़ लीजिए और आगे सूरत आले इमरान में 2-3 दफा ये मौजू आएगा कि हर बंदा मुस्लिम है, सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया को मानने वाले नहीं, हर दौर के फॉलोअर। मिसाल दे देती हूँ कि हजरत नूह के दौर के 70-80 लोग जो बच गए थे वो मुसलमान थे, इसी तरह से। लेकिन लोग अल्लाह के दिए हुए इस नाम पे राजी नहीं होते। जैसे आज भी आप किसी से कहें, कोई कहते आप कौन है, आप कहते हैं मुसलमान है, कहते वो तो ठीक है वो तो सारे हैं, आगे से क्या? मतलब वो सुनना चाहते हैं कि आप सुन्नी हैं, वहाबी हैं, शिया हैं, देवबंदी हैं, अहल हदीस हैं, यानी ये नाम जो आज हमारे मारूफ हैं। मैं उसी के लेके मिसाल देती हूँ कि लफ्ज यहूदी और नसरानी ये सेक्टेरियन फिरकावारियत का नाम था। यहूदा की नस्बत करके यहूदी बन गए और नासरा बस्ती की तरफ नस्बत करके नसारा बन गए। जैसे आज भी जितने भी नाम है देखिए, या तो शख्सियात के नाम पे हैं या जगहों के नाम पे, कुछ बस्तियों के नाम पे कुछ लोग हैं। तो बहरहाल अल्लाह को ये चीज़ पसंद ना आई। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम खुशफहमियों की जन्नत में हो, और हर फिरका ये कहता है मेरे फिरके के लोग जन्नत में जाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे 2 दफा, तो मुझे याद है कि कुल्लु हिस्बिम बिमा लदैहिम फरीहीन, हर फिरका अपने साथ जो थोड़ी सी चीजें लेके बैठा उसी पे खुश है। تو اب اللہ کا جواب سنیے کہ پھر جنت میں کون جائے گا؟ اللہ نے جنت کے دروازے کس کے لیے کھولے؟ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اسے اب اس کا رب پورا بدلہ دے گا، اور اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ غم اور نہ اداسی ہوگی۔ یہ ہے جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ، ٹکٹ ٹو جنہ، ٹوٹل سبمیشن۔ اسلمہ کا لفظ آیا ادھر، اسلام از ناٹ آ ناؤن، اٹس اے ورب۔ جملہ لکھیے گا، اسلام ایک اسم نہیں ہے، فعل ہے۔ مراد صرف نام کے مسلمان بن جانے سے جنت نہیں بنے گی، کام کر کے دکھانے پڑیں گے، اور یہ ہے ادھوری اطاعت سے نکل کر پوری اطاعت میں آنے کا تحفہ۔ خوف اور غم سے نکل جائیں گے، ڈپریشن چلا جائے گا، نہ ماضی کا غم رہے گا، نہ مستقبل کا خوف ہوگا۔ تو ایک مائنڈ میپ کے ساتھ ذرا سمجھیے گا اس کو، کہ جب انسان ایک اللہ کا ہو کر جیتا ہے، خالص ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے رب کا ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ سمینا و آتانا کہتے ہیں، کہ جو سن رہے ہیں اس کو مانیں گے، اور وہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو کبھی نہیں توڑتے۔ اور پارے کے اینڈ پہ ہم دیکھیں گے کہ ان میں ایک خوبی پیدا ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ صبغت اللہ و من احسن من اللہ صبغہ، وہ اللہ کے رنگ میں ڈھلے ہوئے، رنگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ نیکیوں کے مواقع سامنے آنے پر ہیلے بہانے نہیں کرتے، وہ کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں۔ حضو ما آتیناکم بقوہ کی صورت میں آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ کیا جی عبادت ہے مگر اطاعت نہیں، یا ہے بھی تو ادھوری؟ یعنی آج پوری اطاعت نہیں، ادھوری اطاعت ہے۔ ایک اللہ کو ماننے والے بہت ہیں، مگر ایک اللہ کی ماننے والے تھوڑے ہیں۔ ہم اللہ کے نہیں رہے، دوسروں کے ہو گئے۔ اور ایک جملہ آپ کو سورۃ فاتحہ پہ لے جائے گا، کہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین کی بجائے ہم نعبدو کا کہنے والے ہو گئے۔ فرق کیا؟ پہلی سورت جو قرآن میں، اس کا مطلب کہ ہم صرف اللہ کے بندے ہیں، اور دوسرا جملہ جو میں نے بولا اس کا مطلب ہے کہ ہاں ہم اللہ کے بھی ہیں، ہم اللہ کی بھی مانتے ہیں۔ دیکھنا رمضان آئے گا ہم کتنی مانیں گے، عمرے پہ جائیں گے کتنی مانیں گے، اور نیو یارک جائیں گے تو پھر اب کچھ تو کرنا ہے۔ تو اللہ کو آپ سے مجھ سے ادھوری اطاعت، ادھوری محبتیں نہیں چاہیے، پوری اطاعت۔ اور اس کے بعد پھر ان لوگوں میں جو کچھ مزید کمیاں تھیں اس کا ذکر، آیت نمبر 113، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اس کو بھی ذرا سا فرقہ وارانہ اور گروہی تعصب کی نظر سے سنیے، کہ آج کہیں مسلمان بھی یہی تو نہیں کہتے دوسرے گروہوں کے بارے میں؟ کیا یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہود حق پر نہیں، حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں، یعنی کتاب پڑھے وہ کا ذرا عمل تو دیکھو، ممبروں پہ آ کر اور مائک پہ آ کے ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اسی طرح انہی جیسی بات بے علم لوگ بھی کہتے ہیں، اللہ نے علم والوں کو بے علم کہہ دیا، وہ علم والے جو دوسرے گروہوں پہ آ کر باتیں کریں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا، یعنی دنیا میں نہیں مان رہے ہو نا تم کے حق پہ کون ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا۔ اور یاد رکھیے کہ فرقہ واریت یا گروہ بندی کا لازمی نتیجہ کہ اللہ کی مسجدیں ویران ہوتی ہیں۔ دل نہیں لگتا مسجدوں میں، جب مسجدوں میں فرقے ہی کی باتیں کرنی ہیں تو لوگ فرقے کی بات کے لیے تو نہیں جاتے نا، وہ تو اللہ کے لیے جاتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آیت 114 دیکھیے، مسجدوں کی آبادی اور ویرانی کا ذکر ہے۔ وَمَنْ أَسْلَمَ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کیے جانے کو روکے، ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہیے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ کیا پتہ چلا کہ مسجدیں چونکہ اللہ کی ہیں تو وہاں صرف مسجد میں لوگوں کو اللہ سے جوڑیے، گروہی تعصبی باتیں وہاں نہیں کرنی۔ چھوٹی سی مثال سے بات سمجھ لیجئے، گھر والا گھر نہ ہو تو مہمان کا وہاں دل نہیں لگتا، حتیٰ کہ ملازمین اور ان کے بچے آپ کو کھانے پینے مشروب پیش کریں، آپ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، پھر آ جاؤں گی، ابھی ماما گھر نہیں ہے تو میں چلتی ہوں۔ بس بات سمجھ آ گئی ہوگی، جب مسجدوں میں جو اللہ کا گھر ہے اللہ ہی کا ذکر نہ ہو، अल्लाह के नाम से ना जोड़ा जाए, हत्ता के एक जुमला लिख लीजिएगा, कुरान पढ़ने पढ़ाने के दौरान ही ना अल्लाह याद आएगा तो कब आएगा। यानी कुरान तो पढ़ा, दौरे कुरान तो किया, पारा तो पूरा किया, पर अल्लाह से तार ही ना जुड़े। हाँ, पारा पूरा हो गया, ये खुशी है। तो याद रखिए, दिल नहीं लगता। तो हमेशा याद रखिए, दीन की जगह हो, वो मदरसे हो, इंस्टीट्यूट हो। मैं अपने मदरसे का नाम ले देती हूँ, नूरुल कुरान इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, वो ऑन साइट क्लासेस क्यों ना हो, वो ऑनलाइन क्लासेस क्यों ना हो, एक मकसद रखिए कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ना है, बस। इसके बाद बाकी चीज़ें पीछे कर दें, देखिए आबाद होगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा कुछ और कीजिए तो फिर अल्लाह ना करे कि ऐसा हाल हो जो यहाँ जिक्र है। यहाँ से असल में किबले की तब्दीली का मौजू शुरू हो गया, जिसकी इंतहा पारे के शुरू में आएगी दूसरे, जिस पे इंशाल्लाह हम अगले पारे के शुरू में सैर हासिल बात करेंगे। अभी बस एक सबक दे दिया कि बहसों में ना पड़ो, बल्कि क्या करो, वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, इस पे यकीन करो। और मशरिक और मगरिब का मालिक अल्लाह ही है। तुम जिधर भी मुंह करो उधर ही अल्लाह का चेहरा है, और अल्लाह ताला कुशादगी और वसत वाला और बड़े इल्म वाला है। ये कहते हैं कि अल्लाह ताला की औलाद है। अब यहाँ से बिगाड़ की बातें हैं जो बनी इसराइल का था, यानी एक तौहीद के मानने वाले अल्लाह की औलादें बनाने लग गए। तो कह दो इनको, नहीं, बल्कि वो पाक है, जमीन और आसमान की तमाम मखलूक इसकी मलकियत है, और हर एक इसका फरमा बरदार है। कुल्लुल्लहु कानितून, अल्लाह हमें भी कानित बना दे। दो चीज़ें होती हैं कनूत में, लिख लीजिए, दवाम और आजजी। सारी मखलूक पहाड़ों से लेकर समंदरों दरियाओं तक और इस छोटे से इंसान तक इसी कानून के पाबंद है कि मुस्तकिल और आजजी के साथ अल्लाह के फरमा बरदार बने रहो। मुस्तकिल इतात करो, अधूरी टूटी फूटी इतात नहीं, बल्कि पूरी इतात करके कानित बन जाओ। बदी उस समावाती वलर्द, वो जमीन और आसमान को पैदा करने वाला है, वो जिस काम को करना चाहे कह देता है। क्या? फइन्नमा यकूलु लहू कुन फयकून, हो जा, बस वही हो जाता है। लफ्ज़ फयकून को हाईलाइट कीजिए। फा का लफ्ज़ फौरन है। अरबी जुबान में मुस्तकबिल में किसी काम के होने के लिए दो लफ्ज़ आते हैं, एक फा और एक सुम्मा। सुम्मा में डिले होता है, जैसे कभी कभी आपको आवाज देर से पहुंचे, और फा में फौरन है, यानी अल्लाह जब किसी काम को करना चाहते हैं तो एक सेकंड भी नहीं लगता। कुन, हो जा, डन, हो जाता है। तो इतनी कुदरत वाले रब के साथ ताल्लुक जोड़िए, और आप भी उसी से कहा करें कि मालिक, तू तो साहिबे कुन फयाकुन है, तो मेरी भी बीमारियों पे सेहत का कुन कह दे, मेरी गुर्बत पे तवंगरी का कुन कह दे। और हम सब यहाँ इल्म की इस महफिल में ये दुआ भी कर लेते हैं कि अल्लाह जितने साथी इस वक्त हमारे साथ इस बात को सुन रहे हैं, उनकी हर परेशानी को दूर कर दे, बीमारियों को दूर कर दे, परेशानियों से हटाकर सिर्फ और सिर्फ इस बात को समझने वाला बना दे कि अल्लाह ताला साहिबे कुन फयाकुन है। इसके बरक्स कुछ बेइल्म लोगों की बातें, आयत 118, वकालल्लज़ीना ला यालमून, इसी तरह बेइल्म लोगों ने भी कहा कि खुद अल्लाह हमसे क्यों नहीं बातें करता। देखिए, छोटा मुंह बड़ी बात इसी को कहते हैं। हम किसी मुल्क में रहते हुए कभी नहीं कहते कि मलका जो यूके को प्रेजेंट करती है वो खुद आकर कहे कि रेड लाइट पे रुको तो रुकूंगी, और नॉर्वे का किंग ना कहे हमें तो फिर नहीं मानेंगे, और पाकिस्तान के वजीर आजम खुद आकर हुक्म दे, अच्छा तो नहीं लगता। लेकिन अल्लाह के बारे में कुछ लोग इसी किस्म की बेअदबी की बातें करते हैं, या फिर हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। इसी तरह ऐसी ही बात इनके अगलों ने भी कही थी, इनके और उनके दिल यकसां हो गए, हमने तो यकीन लाने वालों के लिए निशानियां बयान कर दी। तो बात नहीं माननी तो ना मानो, नहीं दिल करा ना इताअत को तो छोड़ दो, लेकिन ऐसी बातें ना करो कि बताने वाले नहीं ठीक बता रहे और बात नहीं समझ आती। और फिर अल्लाह के नबी का मुकाम, हमने आपको हक के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। अल्लाह ताला हमें भी इन्हीं दो चीज़ों पे फोकस करने वाला बनाए। एक इल्म देने वाले का यही काम है कि वो कभी मुबशिर बन जाए और कभी नज़ीर बन जाए, बशीरों व नज़ीरा। और इसमें भी देख लीजिए खूबसूरती है, कभी जन्नत की खुशखबरियाँ, कभी जहन्नुम के डरावे। आपसे यहूदी और नसारा हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे, जी ये जुमला कल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी आ गया कुरान में, और आज आपके और मेरे भी लिए। जो मर्जी कर लीजिए, उल्टे जूते पहन के खड़े हो जाए उनके कहने पे, वो आपसे राजी नहीं होंगे। एक शर्त है बस उनके राजी होने की, हत्ता तत्तबिय मिल्लतहुम, जब तक कि आप इनके मजहब की किताबें ना बन जाएं। वो ये नहीं चाहते कि आप मुसलमान न रहें, वो ये भी चाहते हैं कि आप उनका दीन भी ना इख्तियार करें, यानी कोई बीच की चीज बन जाएं। अफतूमनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद के मिसल। तो लिखिए एक जुमला, अधूरी इतात करने वालों से ये दोनों गिरोह बड़े खुश होते हैं, पूरी इतात करने वालों से ये कभी खुश ना होंगे। उसको तो नए नए नाम दे दिए जाएंगे कि तो बड़े फंडोस हैं और ये फलां है और ये फलां है। तो आप कह दीजिए कि अल्लाह की हिदायत ही हिदायत है, और अगर आपने बावजूद अपने पास इल्म जाने के फिर भी इनकी ख्वाहिशों की पैरवी की, तो अल्लाह के पास आपका ना तो कोई वली होगा और ना मददगार। कितनी डराने वाली आयत है। अल्लाह के नबी की तरफ निस्बत करके तो फिर उम्मत की तरफ निस्बत करके देखिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा फितना है। अल्लाह ताला आपको मुझे बचा के रखे कि हम गैरों की तकलीद करें और रब की बात को छोड़ दें। इसके बरक्स कुछ लोग हैं जो इस किताब का हक अदा करते हैं। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, जिन्हें हमने किताब दी वो इसे पढ़ने के हक के साथ पढ़ते हैं। अल्लाह हमें भी इस किताब का हक अदा करने की तौफीक दे। वो इस किताब पर भी ईमान रखते हैं, और जो इसके साथ कुफर करे वो तो नुकसान वाला है। किताब के 5 हकूक हैं। अगर आप मेन वेबसाइट पर जाइए NURULQURAN.com NURULQURAN.com, तो आपको मेन हेडर पे यह आयत दिखेगी, ये बात दिखेगी कि कुरान के 5 हकूक कौन से हैं। अल्लाह ताला हम सबसे वो पूरे करवा ले। अब यहाँ से रोल मॉडल्स की बात है, और वो क्या? अल्लाह ताला फरमाते हैं, या बनी इसराइल अस्कुरु नेमती अल्लती अनमतु अलैकुम, तीसरी और आखिरी बार खिताब है इस कौम को जिनको पीछे 2 बार मुखातिब किया गया। यहाँ से आप बिल्कुल आप पारे का एंड हो रहा है। कैसे पूरे पारे में आपने बनी इसराइल को दी हुई अल्लाह की नेमतों का जिक्र सुना, बार बार के डरावे, बार बार की वार्निंग्स, संभल जाइए, संजीदा हो जाइए, वरना आपसे ये काम ले लिया जाएगा। और साथ ही फिर देखिए अब आखिरी बार कहा जा रहा है, बस अब ख़त्म। क्यों? ए औलादे याकूब, मैंने जो नेमते तुम पर इनाम की हैं इन्हें याद करो, और मैंने तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दे रखी थी। क्या फजीलत थी बनी इसराइल की? अल्लाह ने इनको मनसब इमामत दिया था, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ना था इन्होंने। लेकिन जब इनमें हुब्बे दुनिया का बछड़ा आया तो इन्होंने उस काम को छोड़ा, दीनदारी दुकानदार बन गई। तो इनको आखिरत का खौफ दिलाया जा रहा है, और याद रखिए फिक्रे आखिरत ही वो चीज़ है जो बंदे को सीधा रखती है। वत्तकु यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, इस दिन से डरो जिस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स को कुछ फ़ायदा न पहुँचा सकेगा, न किसी शख्स से कोई फिदिया कबूल किया जाएगा, और न इसे कोई शिफात नफ़ा देगी, और न इनकी मदद की जाएगी। लिखिए लोगों को बेफिक्रा करने में और मुकम्मल की बजाय अधूरी इतात करने में, ये 4 चीज़ें बड़ी अहम है। जो 123 आयत में किसी बच्चे को यकीन हो कि इम्तिहान के दिन सारा पेपर एग्जामिनर हल कर देगा, कोई नकल दे देगा, कोई पेपर चेक करने वाले को सिफारिश भेज देगा कि इस बच्चे को फर्स्ट कर दो, तो वो पढ़ेगा। बस यही है आज उम्मत की बेअमली की वजह, किसी ने किसी बुजुर्ग को और किसी ने किसी इंसान के किसी और काम को बुनियाद बनाकर अपने लिए बूटी तैयार की हुई है कि फलां बख्शेगा। हालांकि ये सारी चीज़ें आगे हम बार बार पढ़ेंगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगी कि शिफात बर हक है, सिफारिश होगी लेकिन मशरूत है। बस यहाँ अपने लिए ये अमल का नुक्ता ले लीजिए कि कहीं मेरी अधूरी इताअत की वजह ये तो नहीं कि आखिरत में कोई और मेरी जगह पर पकड़ा जाएगा। इसके बाद अब यहाँ से आगे यानी 124 से दूसरे पारे में 152 तक जो मौजू चलेंगे, ज़रा उसका खुलासा ले लीजिए। तहवील काबा का बयान और इसके साथ तहवील उम्मत का ऐलान, यानी अगले पारे के शुरू में इसको वाज़े करेंगे। दूसरी चीज़ है इसमें साबिका उम्मत मुस्लिमा की माजूली और मुसलमानों के लिए लोगों की इमामत का मनसब, यानी कह लीजिए कि हुकूमत बदलती दिखेगी अगले पारे के शुरू में। लेकिन यहाँ एक हस्ती, एक किरदार, अमली नमूना, और वो कौन है जिनका तस्करा किया, जिनसे यहूद भी ताल्लुक जोड़ते और मुसलमान भी और नसारा भी, वो थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो उनका तस्करा देखिए, पहला लफ्ज़ जो इब्राहिम के नाते से हम पढ़ने वाले हैं वो आजमाइशों का है, इब्तला का है। वैसे इब्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फातमहुन, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इनके रब ने कई कई बातों से आजमाया और उन्होंने सब को पूरा कर दिया, तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हें लोगों का इमाम बना दूंगा। अर्ज करने लगे, मेरी औलाद को। फरमाया, मेरा वादा जालिमों से नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन थे? चंद जुमले लिखे इब्राहिम के लिए क्रेडिट में, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस में सबसे बड़ा जो अवार्ड दिया जा सकता है वो अल्लाह ने इब्राहिम को दिया। 4000 साल पहले की शख्सियत। इब्राहिम कौन थे? अधूरी नहीं, पूरी इताअत करने वाले। अनम तालेहिम की बेहतरीन मिसाल। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की दुआ का नतीजा। 24/7 टाइम के मुस्लिम। लम्हा लम्हा कुर्बानियां देने वाले इब्राहिम। हिजरतें करने वाले इब्राहिम। बेटे की गर्दन पे छुरी चलाने वाले इब्राहिम। बेटे और बीवी को सहरा में अल्लाह के हुक्म पे छोड़ने वाले इब्राहिम। और आखिरी नबी और उम्मत के लिए रो रो के दुआएं मांगने वाले इब्राहिम। बानिए काबा कहलाने वाले इब्राहिम कि कैसे उन्होंने अल्लाह का घर बनाया जो अपनी बुनियादों के ऊपर तो कायम था लेकिन ऊपर से इमारत चली गई, और अल्लाह ने इब्राहिम को कैसे आजमाया, मोहब्बतों में आजमाया, इब्राहिम की अक्ल का इम्तिहान लिया, जिस बात का इम्तिहान लिया, पढ़ते ही जाएंगे पूरे कुरान में और इनसे मोहब्बत महसूस करते जाएंगे। और अल्लाह ताला ने जब इब्राहिम को चुना तो ये नहीं कहा कि अल्लाह मेरी औलाद का क्या होगा, बल्कि ज़ुर्रियत का लफ्ज़ बोला जो सिर्फ औलाद के लिए नहीं आती बल्कि नस्लों के लिए आती है। नस्लों का गम खाने वाले इब्राहिम अपनी औलाद के लिए क्या मांगते हैं जब अल्लाह उनको अपने घर की तामीर का हुक्म देते हैं। आइए इसको एक गो में पढ़ते हैं, दिल में ये दुआएं करते जाएं कि अल्लाह हमें भी चुन ले अपने दीन के लिए, घर बनाने वाले, चलाने वाले, जगह बनाने वाले, फिर उसका इंतज़ाम करने वाले। जो मुसलमान आज के दौर में दीन और दीन के काम करने को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, लिख लीजिए सिर्फ कल उन्हीं की नस्लें बचेंगी, बाकी तो न जाने किस किस फितने का शिकार होंगे। हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए सवाब और अमन अमान की जगह बनाई, तुम मुकाम इब्राहिम को जाए नमाज बना लो। हाईलाइट करें, आप जिस जगह पे अल्लाह के नाम पे खड़े हो जाते हैं ना, अल्लाह उसको भी लोगों की हिदायत का जरिया बनाते हैं। मुकाम इब्राहिम इसकी दलील है। हमने इब्राहिम और इस्माईल अलैहिस्सलाम से वादा लिया कि तुम मेरे घर को तवाफ करने वालों और एतकाफ़ करने वालों और रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखो। पीछे चुनाव की बात थी, यहाँ काम सफाई का लिया जा रहा है। तो मत सुनिए कि हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया जाए या हाथ में माइक पकड़ा दिया जाए तो पहला काम तो अदना है और दूसरा बुरा। अल्लाह के रास्ते का कोई काम अदना नहीं, क्योंकि ये रास्ता बड़ा आला है। अब इब्राहिम की दिल से निकली हुई दुआएं देखिएगा, नोट करिएगा कि अपनी औलाद के लिए दुनिया भी मांग रहे हैं और आखिरत भी मांग रहे हैं, जिस्मानी रिस्क भी, रूहानी भी, और सबसे बड़ी बात एक अच्छा उस्ताद मांग रहे हैं, क्योंकि घर तो बना दिया, अब इसको आबाद करने के लिए एक अच्छा उस्ताद भी दे और सिलेबस भी मांग रहे हैं। इब्राहिम अल्लाह का इतना प्यारा बंदा होने के बावजूद इबादत के तरीके खुद नहीं वजह कर रहा, बल्कि अल्लाह से कहेंगे कि अरीना मना सिकना। आइए इसको पढ़ते हैं। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ परवरदिगार, तो इस जगह को अमन वाला शहर बना और यहाँ के बाशिंदों को जो अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखने वाले हों फलों की रोजियाँ दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं काफिरों को भी थोड़ा सा फ़ायदा दूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत की बात की, अल्लाह ने अदल की बात की, फिर इन्हें आग के अजाब की तरफ बेबस कर दूंगा, ये पहुँचने की बड़ी बुरी जगह है। ज़रा सब आंखों में एक मंजर लाइए, बूढ़ा इब्राहिम और जवान होता हुआ इस्माइल अलैहिमुस्सलाम, अल्लाह इन दोनों पे अपनी रहमतें करें। काबा की बुनियादें उठाते जाते हैं और कहते जाते हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम। ऐ परवरदिगार, तू हमसे कबूल फरमा, तू ही सुनने वाला और जानने वाला। आपकी मेरी जुबान में अगर बाप मिस्त्री है तो बेटा मजदूर है। अमूमन मिस्त्री मजदूर इल्म ना होने की वजह से गाने गाते और अजीबोगरीब बातें करते हुए काम करते हैं, लेकिन इस बाप बेटे की जुबान पे दुआएं हैं, कबूलियत का गम है, क्योंकि असल चीज काबिलियत नहीं है, कबूलियत है। हम सारी जिंदगी काबिलियतें ही बढ़ाते रहते हैं, अब ये भी कर लें, ये भी डिग्री ले लें, ये भी सर्टिफिकेट ले लें, ये भी कर लें, वो भी डिग्रियाँ और कोर्सेज कर लें। काबिलियतें मुँह पे मारी जाती हैं अगर कबूलियत ना हो। नेक लोग काम करते वक्त ये नहीं देखते कि मैं टैलेंटेड कितना हूँ, वो ये कहते हैं कि कबूल हो जाए। कितना बड़ा काम कर रहा हूँ, ये निकाह सेहरा में बिठा के अल्लाह ने मुझसे अपना घर बनवा लिया। हा हा हा, अपने कंधे नहीं थपथपाए। हाँ, अल्लाह ने मौका दिया लेकिन उनको गम में कबूल हो जाए। खलीलुल्लाह थे मगर इबादत के तरीके खुद नहीं बना रहे। तो क्या पता चला आपको मुझे कि अल्लाह ने कबूलियत को रखा है। देखिए, समझ लीजिए, मिसाल से बात वाजे अच्छी हो जाती है। आप कितना ही आला खाना बनाएं लेकिन जिसको पेश करते हैं वो आपसे नाराज़ है। कभी शौहर बीवी में झगड़ा हो तो शौहर कहते मैं खाना नहीं खाऊंगा, बीवी चाहे उसकी फेवरेट चीज़ बनाए वो कहते अपने पास रखो, मैं नहीं खाता, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। क्या बीवी का वो खाना किसी काम आया? बस आप मैं जितने मर्जी काबिल हैं, अगर अल्लाह ताला आपकी मेरी इस वक्त भी ये कोशिश कबूल नहीं कर रहा, मैं खुद को झंझोड़ के कहूंगी। आपको मेरी बात समझ आ रही हो, आपको फायदा हो रहा हो, लेकिन अल्लाह इसको कबूल ना करे। और अल्लाह किन की कबूल करता है? सूरत मायदा में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, तकवा वालों की कबूल होती है। और कबूलियत के बहुत सारे असबाब हम पढ़ते ही जाएंगे पूरे सफर में। तो इस वक्त भी अपने अपने काम पे खड़ा बंदा कहे कि रब्बना तकब्बल मिन्ना, और सीखने वाले सुनने वाले भी यही कहे कि अल्लाह हमसे ये कबूल कर ले, क्योंकि इल्म की महफिल को अगर अल्लाह कबूल कर ले तो दर्जों की बुलंदी होगी इंशाल्लाह। ए हमारे रब, हमें अपना फरमा बरदार बना ले। अगला हिस्सा दुआ का, मैं तो दूसरों को सुना के चली जाऊं और खुद अधूरी इताअत करूं तो मुझे आपको सुनाना फायदा नहीं देगा। अल्लाह आज दीन देने वालों को मुकम्मल मुस्लिम करे, वो ना अपोलोजेटिक हो जाए, वो ना कि हाँ आज के दौर में तो ऐसी है, और लोगों को ये ना कहना पड़े हाँ नहीं बाजी भी ऐसी करती हैं, हाँ उनका भी अपना घर है सूद पे लिया हुआ, और वो भी क्या करे उनके भी मियाँ ये करते वो। नहीं, पूरी इताअत कीजिए ताकि दीन बदनाम ना हो। और हमारी औलाद में से भी एक जमात को अपनी इताअत पर रख, और हमें अपनी इबादतें सिखा, और हमारी तौबा कबूल फरमा। तू तौबा कबूल फरमाने वाला और रहमो करम करने वाला है। अल्लाह ये सारी दुआएं हमारी औलादों के हक में भी कबूल करे। तो एक माइंड मैप देखिएगा, मुखलिस बंदे की खूबी क्या? मुखलिस बंदे को काबिलियत से ज्यादा कबूलियत की फिक्र होती है, प्लस अपनी औलादों को साथ लेकर चलता है। तो आज अपनी जिंदगी में अपनी औलादों को देखियों के काम में साथ रखिए, बाद में पता नहीं इनका क्या होगा। साथ लेकर बैठा करे अपने बच्चों को। नहीं समझ आता, कोई बात नहीं, इस इल्म की महफिल और बरकत तो उन पर आएगी। फिर अगली खूबसूरत दुआ, ए हमारे रब, इनमें इन्हीं में से रसूल भेज जो इनके पास तेरी आयतें पढ़े, इन्हें किताबो हिकमत सिखाए और इन्हें पाक करे, यकीनन तू गलबे वाला और हिकमत वाला है। ये क्यों कहा? इन्हीं में से क्यों भेज? इसलिए कि इनका हम जुबान होगा, इनका कल्चर जानता होगा, इनके प्रॉब्लम्स और इनके इश्यूज जानता होगा। देखिए, अगर इस वक्त उर्दू की बजाय आपसे कोई चाइनीज में दौरे कुरान करवा दे तो कितने लोग बैठे रहेंगे? तो हम जुबान और हम कल्चर होना बात को बहुत आसान कर देता है। और साथ ही साथ क्या करे, इनको पाक करे। तस्किया, तस्किया दो तरह का होता है, एक जिस्मानी क्लिनजिंग और एक जहनी। क्या पता चला कि आपको मुझे भी अपने बच्चों की जिस्मानी ज़रूरियात को भी पूरा करना है और इनकी जहनी ज़रूरियात को भी पूरा करना है। और दीन इब्राहिमी से वही बेरगबती करेगा जो महज बेवकूफ़ होगा। हमने तो इसे दुनिया में भी बरगजीदा किया था और आखरत में भी वो नेकुकार होगा। हाईलाइट कीजिएगा, आज बहुत सारे लोग मुकम्मल अतात से इसलिए घबराते हैं कि वो बेवकूफ़ लगेंगे। स्टुपिडिटी है, बहुत मुश्किल है। हालांकि अल्लाह अच्छे कामों से रुकने को यहाँ क्या कहते हैं आप देखिए। तो क्या पता चला कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके जो आज नबी सल्लम के तरीकों की सूरत में आपके मेरे पास हैं उस पे चलना है इंशाल्लाह। क्या था तरीका इब्राहिम अलैहिस्सलाम का? इस काल लहू रब्बुहु अस्लिम काल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। जब कभी भी ने इनके रब ने कहा फरमा बरदार हो जा, उन्होंने कहा मैंने रब्बुल आलमीन की फरमा बरदारी की। इसकी वसीयत इब्राहिम और याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को की कि हमारे बच्चों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस दीन को पसंद फरमा लिया, खबरदार तुम मुसलमान ही मरना। देखिए, इब्राहिम की नस्ल से पैदा होने वाले याकूब, कितनी नस्लें हैं बीच में, लेकिन बाप के बाद बेटे को भी वही गम लगा हुआ है। क्या पता चला कि इल्म का विरसा नस्लों को मुंतकिल करना है और मरते दम तक मुसलमान रहना है, फुल टाइम मुस्लिम। क्या याकूब अलैहिस्सलाम के इंतकाल के वक्त तुम मौजूद थे जब उन्होंने अपनी औलाद को कहा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? आपने भी ये सवाल आज लिख लीजिए जब मर्जी, लेकिन अपने बच्चों से पूछना है। तो सब ने जवाब दिया कि आपके माबूद की और आपके अबाउजदाद इब्राहिम اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ جماعت تو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے، اور جو تم کرو گے تمہارے لیے۔ ان کے اعمال کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤ گے، کیوں؟ اس لیے کہ جہاں عمل پیچھے رہ جائے وہاں نسب کام نہیں آتا۔ تو آپ نے، میں نے بھی اپنے عمل اچھے کرنے ہیں، چند لوگوں سے نسبت کی وجہ سے جنت میں جانے کا خیال دل میں نہیں لانا۔ یہ کہتے ہیں یہود و نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، تم کہو بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام خالد اللہ کے پرستار تھے اور وہ مشرک نہ تھے۔ اے مسلمانوں، اب آپ کو مجھے آخری جملے دیے جا رہے ہیں، ذرا سا اپنے اوپر غور کرو۔ تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، اور اس چیز پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کو دیے گئے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کے مسلمان ہیں۔ 24 ٹائم کی اطاعت کرنے کا وعدہ کرتا ہے بندہ اللہ سے، یہ نہیں کہ پارٹ ٹائم مسلم بنوں گا۔ اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں، کون سا؟ 24/7 متی ہونے والا، تو ہدایت پائیں۔ اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں، اور اگر منہ موڑیں تو وہ صریح اختلاف میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا، وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ تو پھر آج آپ نے، میں نے اس بارے کے اینڈ پہ کیا نیت، کیا ارادہ کرنا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا، ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو مخلص بندے کا سفر کیسے چلتا ہے، ایک مائنڈ میپ دیکھیے گا۔ سب سے پہلے مسلمون، مسلم بنتے بنتے اللہ عابد بنتا ہے تو عابدون، اور آخر میں مخلصون میں بنتا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ فرقہ واریت سے آزاد، ہر رنگ سے آزاد، ظاہری طور پر بھی مسلمان دکھنے والا مسلمان بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسا گروہ چاہتے ہیں جو ہر رنگ سے پاک ہو، صرف اللہ کے رنگ میں رنگا ہو، اور صبغت اللہ ہے وہ رنگ جو ہر فرقہ واریت کے رنگ سے پاک، ادھوری اطاعت سے پاک، مکمل متی ہے۔ تو آئیے اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگنے کی نیت کرتے ہوئے اس پارے کی آخری آیتیں پڑھتے ہیں۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، آپ کہہ دیجئے، کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا اور تمہارا رب ہے؟ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اللہ تعالیٰ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ تلک امت قد خلت، آخری آیت پارے کی توجہ دیجئے گا۔ لہا ماں کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما کانوا یعملون، یہ امت ہے جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا ان کے لیے، اور جو تم نے کیا وہ تمہارے لیے، تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤ گے۔ تو یہ پیغام ہے آج کی امت مسلمہ کو۔ ذرا سا پارے کے جمز لیجئے گا جس میں پورا پارا سمٹ جائے گا، چند سنہرے حروف۔ نمبر ایک، جو چیز ہم نے سیکھ لی کہ صرف ایک رب کا بننا ہے، قرآن پاک سے تعلق مضبوط رکھنا ہے، خضوع ما آتیناکم بقوۃ، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی برضا رہنا ہے، مقصد حیات پر نظر رکھنی ہے، حنیف ہونا ہے، سمعنا و اطعنا کہنا ہے اور کرنا ہے، اور سب سے بڑی بات صبغت اللہ میں ڈھلنا ہے۔ رنگ ریز کو ذہن میں لے آئیے، پچھلے رنگ کو اتار کر اگلا رنگ چڑھاتا ہے، رنگ کاٹ بھی آتا ہے۔ یہ سارے مراحل الگ سے ہم نے بڑی تفصیل سے سبیل الجنہ میں بھی پڑھے ہیں، آپ انہی آیتوں کی ڈیٹیل تفسیر سن لیجئے تو آپ کو یہاں صبغت اللہ کی بات سمجھ آئے گی۔ ایک حدیث ابن ماجہ کی 230 سن لیجئے، ابو امامہ سے پہنچی کہ ایک شخص آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر کوئی شخص جہاد کرے، مزدوری کی تمہ سے روپیہ ملے اور نام پیدا کرنے کے لیے، اس کے لیے کیا ہے؟ تو فرمایا، اس کو کچھ ثواب نہیں ہوگا، یعنی دین کے کام کرنا اور کچھ ساتھ دنیاوی فوائد بھی ہمیں ملتے جائیں، اس نیت سے کیے ہوئے کام سے ثواب نہیں ہوگا۔ پھر اس شخص نے یہی سوال 3 بار پوچھا اور آپ نے یہی جواب دیا کہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ جل جلالہ نہیں قبول کرتا مگر وہ عمل جو خالص اسی کے لیے ہو اور اس کے کرنے سے خاص اللہ کی رضا مندی مقصود ہو، نہ دنیا کا مال و متاع یا نام آوری، ورنہ اللہ کے نزدیک وہ نیکی بیکار بلکہ وبال ہوگی۔ آخر میں ہم اخلاص پہ اپنے آپ کو چیک کر لیں، قبولیت والے کام کرنے ہیں۔ اب ہم نے آج ایک پارے کا تھیم رکھا اور وہ ادھوری اطاعت تھی، تو اب اس کا حل قرآن کے اس پارے سے تو ہم نے لے لیا۔ ذرا سا ایک مائنڈ میپ لے لیجئے کہ فتنوں کا حل کیا ہے، سلیوشن آف دی فتنس۔ نمبر 1، صرف ایک اللہ کے لیے خالص ہونا، متی بننا، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، ان پہ عمل کرنا، اطاعت کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو دور کرنا ہے اور اپنے تعلق باللہ کو مضبوط کرنا ہے، سورت فاتحہ سے شکر سیکھنا ہے اور اللہ کے احسانات کو یاد رکھنا ہے، شیطان اور بنی اسرائیل کی طرح ناشکری نہیں کرنی، پھر شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے ہوئے اللہ کی ہدایت کی پیروی کرنی ہے، خضوع ما آتیناکم بقوت واسمعوا والی آیت پہ عمل کرنا ہے، قرآن کو مضبوطی سے تھامنا، سمعنا و اطعنا کرنا ہے اللہ کے حکموں کے معاملے میں، بیجا سوالات نہیں کرنے، اور سمعنا و عصینا نہیں کہنا، اور سب سے بڑی بات جو ہم نے سیکھی، ادھورا دین نہ لینا ہے، نہ دینا ہے، نہ عمل کرنا ہے، یعنی لیتے ہوئے پورا لیجئے، کل دوسروں کو پورا دیں گے تو پوری امت میں انشاءاللہ پورا دین پہنچے گا۔ اپنے عمل کی کمزوریوں سے دوسروں کو دین سے پٹ آف نہیں کرنا اور دین کے معاملے میں پک اینڈ چوز نہیں کرنا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، نہیں کرنا۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے سیکھا کہ سب سے کٹ کے ایک رب کا ہونا ہے، فوکسڈ اور حنیف بننا ہے۔ اور قصہ موسیٰ، قوم موسیٰ کا جو ہم نے پڑھا ڈیٹیل سے، اس سے سبق لینا ہے کہ غیر اللہ کی محبت کے بچڑوں کو دل سے نکالنا ہے، اپنے آپ کو خالص کرنا ہے اللہ کے لیے اور اپنی ہدایت کی دعا کرنی ہے، مخلصین کی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی ہے، مسلمون سے لے کر عابدون اور مخلصون کے درجے پہ پہنچنا ہے، صبغت اللہ یعنی خالص اللہ کے رنگ میں ڈھلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و توب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، و توب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔